आगे सबक देखिए भाई, बिगैरिही मा ऐतकून तिलकल मुलाबसतु बिगैरि कौनिल बदली कुल्लल मुबदली मिन्हु औ जुज़अहु फयदखुलु फीही मा इदा कानल मुबदलु मिन्हु जुज़अम मिनल बदल वयकूनु इब्दालुहु मिन्हु बिनाअन अला हादिहिल मुलाबसा नहु नज़रतु इलल क़मरि फलकिही। भाई गुज़श्ता सबक में बदल के बारे में हम पढ़ रहे थे, साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि बदल जो है उसकी चार किस्में हैं। एक बदलुल कुल है, एक बदलुल बाज है, एक बदलुल इश्तेमाल है और एक बदलुल गलत है भाई। और फिर साहिब जामी ने आपको बतलाया कि बदल की ये जो पहली दो किस्में हैं यानी बदलुल कुल और बदलुल बाज, इसके अंदर बदल का लफ्ज मुजाफ है और अल कुल ये मुजाफिले है, इसी तरह अल बाज ये मुजाफिले है और ये इजाफत बयानी है। इजाफत बयानी उसको कहते हैं जिसमें मुजाफिले मुजाफ से गैर नहीं होता बल्कि उसी को बयान करता है। और उसके जानने का तरीका मैंने बतलाया था कि मुजाफ यानी जो पहले आया है उसको मुबतदा बना दें और जो बाद में आया है यानी मुजाफिल है उसको खबर बना दें। तो अगर जुमला सही बन जाए तो इसका मतलब है ये इजाफत बयानी है। जैसे खातमु फिज़तिन, तो अलखातम को बनाए मुबतदा और फिज़ा को बनाए खबर भाई। अलखातमु फिज़तुन, वो अंगूठी चांदी है। देखो जुमला सही बन गया, मफहूम सही है कि वो जब चांदी से बनी है तो वो अंगूठी चांदी ही है भाई। तो यहां पर भी जो बदल की इजाफत अलकुल की तरफ हो रही है ये इजाफत बयानी है। बदलुल कुल ली, वो बदल क्या है, वही बदल कुल है माकबल यानी मुबदल मिनहू का। बदलुल बाजी, ये बदल जो है यही बाज है, ये जो बदल आया यही बाज है माकबल यानी मुबदल मिनहू का भाई। और जबकि बाकी दो जो बदल हैं बदलुल इश्तेमाल और बदलुल गलत, उसके अंदर मुसब्बब की इजाफत हो रही है सबब की तरफ। बदलुल इश्तेमाल, उसके अंदर चूंकि ये जो इश्तेमाल है ये सबब बनता है बदल के लाने का। सुलीबा जैदुन सौबुहू, तो ये यहां बदल क्यों लाया गया, क्योंकि ये जैद पर मुश्तमिल था। तो बदल और मुबदल मिन्हू में इश्तेमाल वाला ताल्लुक होता है और ये इश्तेमाल सबब बनता है बदल के लाने का। और इसी तरह बदलुल गलत, इसको बदलुल गलत क्यों कहते हैं, क्योंकि गलती सबब बनी इसके लाने का। तवज्जो है, तो इनके अंदर इजाफत हो रही है मुसब्बब की सबब की तरफ। बदलुल इश्तेमाल, ऐसा बदल जो लाया गया है इश्तेमाल की वजह से। और बदलुल गलत, ऐसा बदल जो लाया गया है गलती की वजह से। तो बदल हुआ मुसब्बब और गलती हुई सबब। इसी तरह बदलुल इश्तेमाल, बदल हुआ मुसब्बब और इश्तेमाल हुआ सबब भाई। तो यहां पर जो बदलुल गलत को बदलुल गलत कहा गया, इसका यह माना नहीं कि यह बदल गलत है। हां, यह गलती की वजह से लाया गया है तो गलती के साथ भी इसका ताल्लुक आ गया। जब गलती के साथ इसका ताल्लुक आ गया तो इसको बदलुल गलत कहना यानी यह नाम देना सही हुआ, क्योंकि गलती की वजह से इसको लाया गया है तो गलती से इसका ताल्लुक हुआ भाई। इसी तरह बदलुल इश्तेमाल को इश्तेमाल की वजह से लाया गया है तो इश्तेमाल जो है इसके साथ उसका ताल्लुक आ गया। जब ताल्लुक आ गया तो इसको बदलुल इश्तेमाल कहना सही है भाई। अगर ताल्लुक ही ना होता फिर यह नाम नहीं दिया जा सकता था भाई। और फिर उसके बाद बतलाया था कि बदलुल कुल जो है उसमें बदल और मुबदल मिनहू दोनों का मदलूल एक ही होता है। और फिर शारह रजी की बात जिक्र फरमाई, वो फरमाते हैं कि अभी तक मुझे बदलुल कुल और अथवे बयान में कोई वाज़ह फर्क मालूम नहीं हुआ, बल्कि मेरी नजर में जो भी अथवे बयान है वो बदले कुल ही है भाई। और शारह रजी मजीद फरमाते हैं कि ये जो उलमाए नहव ने लिखा है कि अत्फे बयान जो है वो मकसूद नहीं होता बल्कि माकबल मातूफुन अलै वो मकसूद होता है। और इसी तरह बदल के बारे में उलमाए नहव ने लिखा है कि बदल मकसूद होता है और मुबदल मिनहू जो है वो मकसूद नहीं होता। ये बात हमें तस्लीम नहीं है कि मुबदल मिनहू मकसूद नहीं होता। और फिर उसके बाद शारह जामी ने मीर सईदुस सनद का कौल जिक्र फरमाया बतौर जवाब के कि मीर सईदुस सनद फरमाते हैं कि ये जो उलमाए नहव ने लिखा है कि मुबदल मिनहू मकसूद नहीं होता, इसका ये माना नहीं है कि ये बिल्कुल सिरे से मकसूद ही नहीं होता, बल्कि माना ये है उनका कि ये मकसूद असली नहीं होता, मकसूद असली बदल होता है। और फिर उसकी वजाहत की मीर सईदुस सनद ने एक मिसाल के जरिए, मसलन आप कहते हैं जा अनी अखू का जैदुन, इसमें अखू का ये मतबूअ है और जैदुन ये क्या है ताबिअ है, तो अगर आपका मकसद इब्तिदा से ही ये था कि आप अखूका की तरफ जा की निस्बत करना चाहते थे और जैद लाकर आपने सिर्फ अखूका की वजाहत की है, तो फिर इस सूरत में यह जैद अत्फे बयान कहलाएगा। और अगर शुरू से ही आपकी यह नीयत थी कि इसनाद मैंने जैद की तरफ करना है लेकिन उससे पहले यह अखूका को बतौर तमहीद के आप ले आए हैं, तो फिर इस सूरत में यह जैद यह मकसूद हुआ तो यह बदल कहलाएगा, यह बदल है भाई। और इस बदल की वजह से भी वजाहत तो हासिल हो रही है जैसे अत्फे बयान में वजाहत और तौज़ीह हासिल होती थी, लेकिन बदल से जो तौज़ीह हासिल हो रही है वो तबअन हासिल हो रही है, वो मकसूद असली नहीं, मकसूद असली जो है वो इस बदल की तरफ इस्नाद करना है, वो इसकी तरफ इस्नाद करना है तमहीद के बाद। तो दोनों में फर्क वाज़ह और जाहिर है। और फिर उसके बाद बतलाया था कि बदल की दूसरी किस्म बदलुल बाज़ है, और बदलुल बाज़ वो है जो अपने मतबू यानी मुबदल मिनहू का जुज होता है, जैसे ज़रबतु ज़ैदन रअसहू। और तीसरी किस्म जो है वो बदल की वो बदलुल इस्तेमाल है, और बतलाया था बदलुल इस्तेमाल वो है कि बदल और मुबदल मिनहू के दरमियान ताल्लुक होता है लेकिन यह ताल्लुक कुल्लियत और जुजियत के अलावा होना चाहिए और इस तौर पर होना चाहिए कि मतबू की तरफ जब निस्बत की जाए तो ताबिया की तरफ भी इजमालन निस्बत हो जाए, जब मतबू की तरफ निस्बत की जाए तो ताबिया की तरफ भी इजमालन निस्बत हो जाए। जैसे आपने कहा सुलिबा जैदुन, मतबू जो जैद है उसकी तरफ निस्बत की लेकिन ताबिया की तरफ भी जिमनन निस्बत हो गई क्योंकि सुनने वाला समझ जाता है कि ये जैद इसको तो नहीं छीना जा सकता, मालूम हुआ कोई और चीज है जिसको छीना गया है और वो उसका मुंतजिर रहता है। तो देखो निस्बत सुलिबा की हुई जैद की तरफ लेकिन जिमनन इजमाली तौर पर एक और निस्बत भी हुई जिसके बारे में सुनने वाला मुंतजिर रहता है और आगे सौबहू आकर फिर उसकी वजाहत कर देता है। या जैसे आप कहते हैं आजबनी जैदुन इल्मुहू, मुझे जैद ने ताज्जुब में डाला यानी उसके इलम में, तो अब यहां आजबनी जैदुन जब आपने कहा तो सुनने वाला समझ गया कि जैद की जात ने तो ताज्जुब में नहीं डाला होगा, जैद की सिफात में से कोई सिफत होगी जिसने ताज्जुब में डाला होगा लेकिन इजाब की निस्बत तो जैद की तरफ हो रही है लेकिन जिमनन उसकी सिफात में से एक सिफत की तरफ भी क्या हो गई निस्बत हो गई इजमाली तौर पर। और आगे फिर इल्मुहू ने आकर उसकी वजाहत कर दी कि वह कौन सी सिफत है जिसने ताजुब में डाला है, वो सिफते इलम है। बात समझ में आ गई। और फिर बतलाया था कि जरब तो जैदन हिमारहू और जरब तो जैदन गुलामहू, ये बदलुल इस्तेमाल की मिसालें नहीं हैं बल्कि ये बदलुल गलत हैं, इसलिए क्योंकि जब आपने जरब तो जैदन हिमारहू कहा तो जरबतु की जैसे ही निस्बत जैद की तरफ की तो बात पूरी हो गई क्योंकि जैद जरब को कबूल कर सकता है, जैद की पिटाई हो सकती है। तो फिर आगे हिमारहू आप लाए तो जहन इसका कोई मुंतजिर नहीं था, तो यह मालूम हुआ यह कौन सा बदल है, यह हिमारहू यह बदलुल गलत है, यह बदलुल इस्तेमाल नहीं, बदलुल इस्तेमाल में जहन मुंतजिर रहता है भाई। तो जरब तो जैदन हिमारहू, यह हिमारहू भी बदलुल गलत, और जरब तो जैदन गुलामहू, यह गुलामहू भी क्या है बदलुल गलत है, बदलुल इस्तेमाल नहीं है, अगरचे उस हिमार का भी ताल्लुक है जैद से और उस गुलाम का भी ताल्लुक है जैद से, यह जो बदल बन रहा है लेकिन زید کی طرف جب نسبت کی تو ان کی طرف نسبت ذہن میں نہیں آئی، یعنی زید سی بات پوری ہو رہی ہے، ذہن کسی اور نسبت کی طرف نہیں جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دونوں بدل الغلط کے باب سے ہیں. اب آگے دیکھیے آج کا سبق، کہتے ہیں بغیرہما. میں نے بتلایا تھا بھائی کہ بغیرہما سے کیا مراد ہے، کہ وہ تعلق جو بدل اور مبدل منہ کے درمیان ہو، وہ کلیت اور جزیت والا نہ ہو. وہی اب بیان کریں گے. بغیرہما ای تکون تلک الملابستو، یعنی وہ جو تعلق ہے بغیر کون البدل کل المبدل منہ او جزءہ، وہ علاوہ اس کے ہو کہ بدل جو ہے مبدل منہ کا کل ہو یا جز ہو. بدل کیا ہے؟ مبدل منہ کا کل یا جز ہو، اس کے علاوہ تعلق ہونا چاہیے، وہ ملابست اس کے علاوہ ہونی چاہیے. فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا، تو لہذا داخل ہو گئی اس کے اندر مَا، وہ ملابست بھی وہ تعلق بھی. اذا کان المبدل منہ جزءا من البدل، جب مبدل منہ جز ہو بدل سے. بھئی دیکھیے پہلے آیا تھا بدل البعض، وہ بدل جو تھا وہ جز تھا مبدل منہ کا، اور کہتے ہیں بدل الاشتمال کے اندر کلیت اور جزیت والا تعلق نہ ہو. کیا معنی کلیت اور جزیت؟ یعنی جو بدل ہے وہ مبدل منہ کا کل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جز بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی بدل وہ جز نہ ہو کس کا؟ مبدل منہ کا. اور اگر اس کا برعکس ہوا، مبدل منہ جز ہے کس کا؟ بدل کا، تو وہ بدل الاشتمال میں داخل ہو جائے گا. وہ کس میں داخل ہوگا؟ بدل الاشتمال میں. توجہ ہے؟ تو لہذا ہم نے جو کہا کہ کلیت اور جزیت والا تعلق نہ ہو، یعنی وہ بدل مبدل منہ کا کل بھی نہ ہو اور وہ بدل جو ہے مبدل منہ کا جز بھی نہ ہو. اور اگر اس کا برعکس ہوا، یعنی مبدل منہ جز ہوا کس کا؟ بدل کا، تو پھر یہ صورت تو ماقبل میں ذکر نہیں ہوئی تھی. یہاں بھی دیکھو تعلق ہے یا نہیں، یہاں بھی جزیت والا تعلق ہے، لیکن ماقبل والی صورتوں میں شامل نہیں تھا، ماقبل والی صورتوں میں وہ داخل نہیں، تو وہ پھر اس بدل الاشتمال میں داخل ہو جائے گا. تو مبدل منہ اگر جز ہو کس کا؟ بدل کا، تو یہ کس میں آ جائے گا؟ بدل الاشتمال میں. تو کہتے ہیں فیدخل فیہ ما اذا کان المبدل منہ جزءا من البدل، تو داخل ہو جائے گا اس بدل الاشتمال کے اندر وہ ملابست وہ تعلق بھی. اذا کان المبدل منہ جزءا من البدل، جب مبدل منہ جز ہو بدل سے. ویکون ابدالہ منہ، اور وہ جو ابدال ہوتا ہے اس مبدل منہ سے بنا ان علی ہذہ الملابستی، وہ اس ملابست اس تعلق کی وجہ سے ہو. مبدل منہ کیا ہے؟ جز ہے کس کا؟ بدل کا. تو یہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان کہ مبدل منہ جز ہے بدل کا، اس تعلق کی بنا پر بدل کو لایا گیا ہے. یہ جو ابدال ہے یہ کس بنا پر ہے کہ مبدل منہ جز ہے بدل کا؟ تو دیکھو اس ملابست اور اس تعلق کی بنا پر یہ بدل لایا گیا ہے. بھئی دیکھو نا، بعض بدل لائے جاتے تھے کہ وہ ماقبل کا کل ہوتے تھے، بعض بدل ایسے لائے جاتے تھے جو ماقبل کا جز ہوتے تھے، اور بعض بدل غلطی سے لائے جاتے تھے، اور بعض بدل ایسے تھے جو ماقبل کے ساتھ ان کا اشتمال کا تعلق ہوتا تھا. تو اگر مبدل منہ جز ہو بدل کا تو وہ اس قسم کے اندر داخل ہے بھائی. تو کہتے ہیں یکون ابدالہ منہ، اور وہ جو بدل کو لایا گیا ہے اس مبدل منہ سے بنا ان علی ہذہ الملابستی، وہ اس تعلق کی بنا پر ہو، اس تعلق کی وجہ سے ہو. نحو مثال کے طور پر نظرت الی القمر فلکہ، میں نے دیکھا چاند کی طرف، فلکہ اس کے فلک کی طرف، اس کے میں نے چاند کی طرف دیکھا، فلکی ہی اس کے فلک کی طرف دیکھا. یاد رکھو جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. سورج کے گرد 9-10 سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج ان کا مرکز ہے. سورج ایک ستارہ ہے، सूरज क्या है? एक सितारा उसको कहते हैं जिसकी अपनी रोशनी होती है, और सैयारा जो किसी सितारे वगैरह के ताब्या हो, उसके गिर्द घूमे और उसकी अपनी रोशनी नहीं होती। तो ये जमीन और नौ सैयारों समेत ये सूरज के गिर्द घूम रही है, और सूरज एक मुतवस्सित दर्जे का बल्कि छोटे दर्जे का एक सितारा है भाई। और जो चांद है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, यानी एक खुली फजा है, उस फजा में सूरज दरमियान में है और उसके गिर्द नौ सैयारे घूम रहे हैं। तो जमीन भी पूरे साल में एक चक्कर पूरा करती है सूरज के गिर्द भाई, और एक सेकंड में कई मील का फासला तय करती है, इतनी ज्यादा रफ्तार है जमीन की भाई। जमीन सूरज के गिर्द घूमती जा रही है और चांद जमीन के गिर्द घूमता जा रहा है, साथ साथ उसके चल रहा है भाई। तो ये तो जदीद साइंस कहती है, और जबकि कदीम जो है, कदीम फलासफा यूनान कहते थे कि ये जो पूरी कायनात है ये 13 कुरों से मुरकब है। ये पूरी कायनात 13 कुरों पर मुश्तमिल है। कुरा कहते हैं गोल शय को, गोल चीज जो है उसको क्या कहते हैं? कुरतुन। जैसे ये फुटबॉल को क्या कहते हैं? कुरतुल कदम। तो गोल चीज गेंद जो हो उसको कुरतुन कहते हैं। तो कदीम फलासफा कहते थे यूनान वाले कि ये पूरी कायनात जो है ये 13 कुरों पर मुश्तमिल है। पहला कुरा जमीन का है, कुरा अर्ज, और उसके बाद दूसरा कुरा मा है, पानी का एक कुरा है उसके गिर्द गोल भाई। जमीन मरकज है, ये कुरा है, और फिर इसके गिर्द किस चीज का कुरा है? पानी का कुरा मा है। फिर उस पानी के ऊपर कुरा हवा है, हवा का कुरा है। फिर उस हवा के ऊपर कुरा नार है, आग का एक कुरा है गोल जिस्म। और फिर उसके ऊपर कुरा कमर है भाई, यानी फलक कमर है। क्या है? फलक कमर। वो ही कुरा है, गोल जिस्म है, उसको फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। वो तो वो फलक कमर है। कमर के ऊपर फिर फलक अतारुद है, फलक अतारुद के ऊपर फिर फलक जोहरा है, फिर उसके ऊपर फलक शम्स है, फलक शम्स है, और फिर फलक शम्स के ऊपर फलक मिर्रीख है भाई, फलक मिर्रीख है, और उसके बाद फिर फलक मुश्तरी है, और फलक मुश्तरी के बाद फलक जुहल है, और फलक जुहल के बाद फिर फलक सवाबित है। ये जो सितारे हमें नजर आते हैं इनका आसमान है, और फिर उसके बाद फलकुल अफलाक है 13वें नंबर पर। तवज्जो है। तो ये आपको फलकियात की किताबों में इसकी तफसील मिलेगी कि फलासफा यूनान कहते थे ये पूरा आलम 13 कुरों से मुरकब है। तो इनमें से जमीन मरकज है। जदीद साइंस ने बताया कि नहीं, जमीन मरकज नहीं, लेकिन कदीम उनका यही ख्याल था कि यह जमीन मरकज है, और जमीन जो है ये कुरा है, और इस कुरे के ऊपर क्या है? एक कुराए मा है, फिर कुराए हवा है, और फिर कुराए नार है भाई, कुराए नार है, और फिर उसके बाद फलक कमर है, फलक अतारुद है, फलक जोहरा है, फलक शम्स है, फलक मिर्रीख है, फलक मुश्तरी है, फलक जुहल है, और फिर फलक सवाबित। सवाबित वो सितारे जो सारा साल अपनी जगह रहते हैं भाई। देखो ये जो सैयारे हैं ना जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, इनमें से कदीम जमाने में सिर्फ 6-7 नजर आते थे। कितने? 6-7। बाकी दूरबीन के जरिए बाद में दरियाफ्त हुए हैं। तो वो इन्हीं के कायल थे, और कहते थे कि हर एक का अलग फलक है, हर एक का यूं कहो अलग आसमान है, और अपने अपने आसमान में इनमें से हर एक यूं लगा हुआ है जैसे दीवार में कील लगी होती है। तो फलक कमर क्या है? उसका जो कुरा है, उसका जो फलक है, वो शीशे की तरह शफाफ है, और इसके अंदर चांद यूं लगा हुआ है जैसे दीवार में कील लगी होती है। और ये जो चांद हमें मशरिक से निकलता और मगरिब में डूबता हुआ नजर आता है, ये दरअसल वो चांद का फलक जो है वो हरकत कर रहा है। वो शीशे की तरह शफाफ है और उसमें चांद लगा हुआ है और वो घूम रहा है जमीन के गिर्द, तो वो फलक के घूमने से हमें यूं लगता है चांद भी घूम रहा है। इसी तरह सूरज जो है ये मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। ये दरअसल सूरज हरकत नहीं कर रहा, सूरज तो अपने फलक के अंदर कील की तरह लगा हुआ है। हां वो फलक गोल घूम रहा है तो उसके घूमने से हमें यूं लगता है सूरज भी घूम रहा है, जबकि फलक सवाबित जो बारहवां फलक है आसमान है उसके अंदर ये सारे सितारे लगे हुए हैं। ये जो बाकी सितारे हमें रात को नजर आते हैं जिनकी जगहें नहीं बदलती, वो फलक सवाबित, सवाबित जमा है साबित की भाई, जो अपनी जगह पर साबित हैं, और सबसे ऊपर फलकुल अफलाक है। लेकिन अब जदीद साइंस ने बताया कि कोई ठोस जिस्म नहीं है भाई। उनका तो ख्याल था क्या, फलासफा यूनान का तो ख्याल था कि ये जो अफलाक हैं ये भी ठोस जिस्म है, सख्त जिस्म है, जैसे शीशा होता है। लेकिन अब जदीद साइंस ने बतलाया कि नहीं, कोई ठोस जिस्म नहीं है, चांद एक दायरे के अंदर जमीन के गिर्द घूमता रहता है खाली फजा में, और जमीन चांद को लेकर सूरज के गिर्द घूमती है खाली फजा के अंदर भाई। कोई यहां शीशे जैसा फलक नहीं है भाई। तो देखिए अब मिसाल, कहते नजर तू इलल कमरी फलक ही, मैंने देखा चांद की तरफ, फलक ही यानी उसके फलक की तरफ। यह कदीम फलासफा के मुताबिक जिस फलक में चांद कील की तरह लगा हुआ है, जब चांद को देख रहे हैं तो गोया फलक को देख रहे हैं ना, क्योंकि वो फलक चांद को लेकर घूम रहा है। तो यहां यह फलक क्या है, बदल है किस से, कमर से। चांद क्या है, फलक में लगा हुआ है, तो फलक हुआ कुल और चांद हुआ जुज। तो यहां पर देखो अल कमर ये क्या है, मुबदल मीन हु, ये जुज है फलक ही, किसका, उस कमर के फलक का। तो कमर का फलक क्या है, कुल, और कमर क्या है, उसका जुज। तो मुबदल मीन हु जुज हुआ बदल का, यानी फलक के कमर का। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं नजर तू इलल कमरी फलक ही, मैंने देखा चांद की तरफ यानी उसके फलक की तरफ, वल मुनाकशतु, लेकिन इस पर एतराज होता है कि भाई चांद तो फलक का जुज नहीं है। जैसे देखो एक है दीवार और एक है कील, अगर आप एक कील दीवार पर लगाएंगे तो ये कील कोई दीवार का जुज नहीं बन गया भाई। दीवार तो ईंटों और पत्थरों वगैरह और सीमेंट की बनी हुई है और कील तो और चीज है, तो कील को दीवार में गाड़ने से आप ये नहीं कह सकते ये दीवार है, कील को दीवार नहीं कह सकते, दीवार और चीज है, कील और चीज। इसी तरह ये जो फलक है इसके अंदर चांद गड़ा हुआ है, तो आप चांद को फलक का जुज नहीं कह सकते। लिहाजा ये मिसाल जिक्र करना, नजर तो इलल कमरी फलक ही, मैंने चांद की तरफ यानी उसके फलक की तरफ देखा, तो ये कमर यह मुबदल मीन हूं और फलक ये बदल है, और ये कमर अपने फलक का जुज नहीं है। आप तो मिसाल जिक्र कर रहे थे उस मुबदल मिनहू की जो बदल का जुज हो, लेकिन कमर तो फलक के कमर का जुज नहीं है। एतराज समझ में आया। तो शारह जामी जवाब देंगे कि भाई हां आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आपका एतराज मिसाल पर है। किस पर है, मिसाल पर आप एतराज कर रहे हैं। मिसाल कोई और बना लो, अगर ये मिसाल नहीं, कोई और मिसाल बना लो जिसमें मुबदल मिनहू जुज हो किसका, बदल का। तो ये एतराज करना कि ये कमर तो फलक का जुज नहीं है, ये कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये तो मिसाल पर एतराज है। वो जो हमने कहा कि मुबदल मिनहू जुज होगा बदल का, ये उस पर एतराज नहीं है। तो कहते हैं वल मुनाकशा, तो मुनाकशा कहते हैं बहस करना, तकरार करना किसी के साथ। कहते हैं वल मुनाकशा तू बी अन्नल कमर लैस जुज अम मिन फलक ही, और ये बहस मुबाहसा और तकरार करना कि चांद जो है वो तो अपने फलक का जुज नहीं है, बल हुआ मरकूज उन फी ही, बल्कि चांद तो उसके अंदर गाढ़ा हुआ है, चांद तो उसके अंदर गाढ़ा हुआ है। तो ये मुनाकशत उन फिल मिसाली, तो ये तो मिसाल के अंदर मुनाकशा और बहस है। बात समझ में आ गई। वयुमकिनु और मुमकिन है अयूरदल मिसालिही मिस्लु रअयतु दरजतल असदि बुर्जहू, और कहते मुमकिन है अयूरदल मिसालिही कि इसके लिए ये वाली मिसाल लाई जाए मिस्लु मिसाल के तौर पर, रअयतु दरजतल असदि बुर्जहू मैंने असद का दर्जा यानी उस असद का बुर्ज देखा, मैंने असद का दर्जा यानी असद का बुर्ज देखा। अब यहां दो चार पांच चीजें समझनी पड़ेंगी फिर ही आपको बात समझ में आएगी। याद रखो ये जो आसमान है गोल, जमीन देखो पूरा साल सूरज के गिर्द घूमती है, पूरा साल जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इस घूमने की वजह से साल के मुख्तलिफ महीनों में आसमान के मुख्तलिफ हिस्से हमें नजर आते हैं। ये जो सितारे हैं हर तरफ नजर आते हैं, और कदीम फलासफा के नजदीक ये क्या थे, आसमान। फलक के सवाबित क्या है, आसमान फलक है जिसके अंदर ये सारे सितारे लगे हुए हैं। ये आठ नौ सैयारे नीचे वाले अफलाक में हैं, हर एक का अपना अपना फलक है, तवज्जो है, और फलकुल अफलाक से नीचे जो बारहवें नंबर पर फलक है उसमें ये सारे सितारे लगे हुए हैं। तो जब जमीन घूमती है सारा साल तो हमें आसमान के मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ हिस्से नजर आते हैं। ये इसी तरह जैसे देखो मसलन आप कमरे के एक दरमियान में एक गेंद रखें और उस गेंद पर मसलन एक छोटा सा कैमरा लगा दें दरवाजे की तरफ जी। कैमरा का रुख किधर को है, दरवाजे की तरफ। अब आप गेंद को आहिस्ता आहिस्ता देखो घुमाएंगे तो देखो बाकी तरफ की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता उसमें नजर आती चली जाएंगी। बल्कि यूं मिसाल समझें, मसलन देखें कमरे के दरमियान में मसलन एक मेज रखें, फर्ज करें यह सूरज है, यह क्या है सूरज, और इस सूरज से थोड़े फासले पर आप एक गेंद लेकर खड़े हो जाएं। आप मेज और दरवाजे के दरमियान खड़े हैं तो इस गेंद को अपने हाथ में पकड़ें और इस पर मसलन एक निशान लगा दें या कैमरा लगा दें, किसकी तरफ रुख हो, दरवाजे की तरफ। अब आप इस गेंद को इसी तरह हाथ में पकड़े हुए आराम से मेज से बराबर फासले पर गोल चक्कर लगाएं। आपने चक्कर लगाया मेज के गिर्द, गेंद को आपने नहीं हिलाना, कैमरे का रुख नहीं बदलना, तो आप जूं जूं घूमते जाएंगे आप देखेंगे वो कैमरे का रुख दीवारों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे की दीवारें उसमें आ जाएंगी। आप मेज के दाएं तरफ आए तो कैमरे में दाएं तरफ वाली दीवारें आ रही होंगी, आप बाएं तरफ आए तो बाएं तरफ वाली दीवारें आ रही होंगी, दरवाजे के सामने पहुंचेंगे तो दरवाजे वाली दीवारें आ रही होंगी। तो देखो इसी तरह चारों तरफ आसमान है तो सारा साल आसमान के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ किस्म के सितारे हमें नजर आते हैं जी। तो कदीम फलासफा भी ये मुशाहदा करते थे कि साल के मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ सितारे हमें नजर आते हैं। आपने चक्कर लगाया मेज के गिर्द, कैमरे में पहले एक जानी वाली फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी तरफ सारी दीवारें आहिस्ता आहिस्ता कैमरे में आती चली जाएंगी। घूम तो आप रहे हैं लेकिन कैमरे में यूं आएगा जैसे ये कमरा घूम रहा है। तो देखो जमीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती और इस दौरान आसमान के मुख्तलिफ हिस्से साल भर में नजर आते थे तो उनका ख्याल यह था यह आसमान चक्कर लगा रहा है जमीन के गिर्द, जमीन अपनी जगह है और आसमान उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, हालांकि जमीन घूम रही होती थी सूरज के गिर्द। यह इसी तरह है जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आपको लेकर आगे की तरफ सफर कर रही है, अगर आप खिड़की से देखेंगे तो आपको लगेगा सारी चीजें पीछे को दौड़ रही हैं, हालांकि वो चीजें पीछे को नहीं दौड़ रही, गाड़ी आपको लेकर आगे की तरफ जा रही है। तो उनका भी यही मुशाहदा था कि घूम तो जमीन रही थी लेकिन उनको यूं लगता था ये आसमान घूम रहा है और पूरे साल में हम आसमान के मुख्तलिफ हिस्से देखते हैं। तो ये जो पूरे दायरे में जो है 360 दर्जे होते हैं, 360 दर्जे, तो 12 × 36 12 से तकसीम करें तो हर महीने में 30 दर्जे आते हैं। चलो ये दर्जे भी समझ लो, दर्जे कैसे होते हैं देखो, मसलन फर्ज करें आप एक लाठी जमीन पर रख दें, एक लाठी जमीन पर रखें और इस लाठी के एक सिरे पर जमीन पर आप एक निशान लगा दें, लाठी का ये वाला सिरा जो निशान पर है, अब लाठी के इस सिरे को नहीं हिलाना, दूसरी तरफ से आप लाठी का सिरा पकड़ें और उसको आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठाना शुरू करें। वो दूसरा सिरा लगा रहे जमीन पर, वहां आपने निशान लगाया है, उसी पर वो सिरा रहना चाहिए। तो आप जो जो लाठी का ये दूसरे सिरा ऊपर उठाते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि लाठी और जमीन के दरमियान फासला बढ़ रहा है। एक जानिब एक सिरा तो जमीन के साथ लगा हुआ है लाठी का, और दूसरे सिरे और जमीन के दरमियान फासला बढ़ रहा है। याद रखो इसको जाविया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो जमीन और लाठी के दरमियान फासिला है इसको जाविया कहते हैं, और ये इसकी तकसीम होती है, इसके दर्जे होते हैं। तो आप जो जो लाठी का ये सिरा ऊपर उठाते जा रहे हैं, ये जाविये के दराजात बढ़ते जा रहे हैं। एक सिरा अपनी जगह पर रहे वो नहीं हिलना चाहिए, दूसरा सिरा आप उठाते जा रहे हैं, जमीन और लाठी में दूसरी जानी फासला बढ़ता जा रहा है, यानी जाविये के दर्जात बढ़ रहे हैं। यहां तक कि लाठी को ऊपर करते करते आप बिल्कुल सीधा खड़ा कर दें उसी नुक्ते के ऊपर जहां एक आपने निशान लगाया था। तो अब देखो, अब ये जो दर्जात हैं ये लाठी सीधी है, और जिस तरफ से आपने इसको उठाया था उस तरफ इसके 90 दर्जे का जाविया है। तो चारों तरफ 90 दर्जे का जाविया जमीन के साथ, लेकिन जिस तरफ से हमने उठाया हम उसी की बात कर रहे हैं। तो वो जानिब जहां लाठी जमीन पर पड़ी थी, वो जमीन और लाठी के दरमियान अब 90 दर्जे का जाविया है, जब लाठी ऐन उस नुक्ते के ऊपर सीधी खड़ी है। अब लाठी आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानिब झुकाते चले जाए मजीद भाई, तो देखो जाविया और बढ़ता चला गया। उस पहली जानिब से जाविया बढ़ता जा रहा है, 90 से भी बढ़ गया, यहां तक कि होते होते लाठी बिल्कुल सीधी दूसरी जानिब आ गई। याद रखो, लाठी की पहली जानिब और लाठी की दूसरी जानिब, इसके दरमियान अब 180 दर्जे का जाविया है। लाठी बिल्कुल सीधी थी तो कितना दर्जा था? 90। तो 90 एक तरफ था, 90 दूसरी तरफ था, तो जब आपने लिटा दिया तो 90 और 90 कितने हो गए? 180। और फिर नीचे तो जमीन है, लेकिन अगर ये लाठी नीचे जगह होती और आप इसको घुमाते तो फिर 180 दर्जे ये घूमकर फिर अपनी पहली जगह पर आ जाती। तो ये कुल कितने दर्जे हैं? 360 एक दायरे में। देखो लाठी पूरा चक्कर काटेगी तो 360 दर्जे हो जाएंगे। और इनमें से याद रखना 12 महीने हैं साल के, तो 360 को 12 से तकसीम करें तो हर महीने में 30 दर्जे आते हैं, 12 तीये 36, 30 दर्जे। और फिर याद रखो, तो ये जो एक महीने के अंदर आसमान का जो हिस्सा नजर आता था इसको वो कहते थे ये 30 दर्जे हैं, फिर दूसरे महीने में दूसरा हिस्सा नजर आता था आसमान का, ये अगला हिस्सा। तो अच्छा, तो ये जो 30 हिस्से नजर आते थे एक महीने में आसमान के, इसका नाम वो बुर्ज रखते थे। क्या रखते थे? ये बुर्ज है, यानी एक महीने के अंदर जितना आसमान का हिस्सा आपको नजर आया, हर रोज थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा है, ये सारा एक बुर्ज है। फिर 30 दर्जे जब पूरे हो गए तो अगला बुर्ज शुरू हो गया, 30 दर्जे तक ये बुर्ज रहेगा, फिर उससे अगला बुर्ज आएगा, तो 12 बुर्ज बनाए। इसी तरह उन फलासिफा ने कितने बुर्ज? 12 बुर्ज बनाए, और उनके मुख्तलिफ नाम हैं, आज भी किताबों में आपको मिलेंगे कि मसलन ये बुर्ज हूत है, हूत हा वाव और लंबी ता दो नुक्तों वाली, हूत का माना मछली, या ये बुर्ज सौर है, सा वाव रा, सौर बैल को कहते हैं, ये बुर्ज सौर है। फिर आगे एक बुर्ज असद होता है, उस नाम ये नाम है बस, वैसे ही नाम रखे हुए थे, ये बुर्ज असद है, ये बुर्ज सुंबुला है, ये बुर्ज जौजा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह 12 बुर्ज थे, और हर बुर्ज में कितने दर्जे थे? 30 दर्जे। एक महीने के अंदर पूरा बुर्ज तय हो जाता था, हर रोज थोड़ा थोड़ा फर्क, क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, हर रोज थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा है। तो ये इनमें से एक बुर्ज का क्या नाम है? बुर्ज असद। और ये कितने दर्जे पर मुश्तमिल है? 30 दर्जे पर, हर बुर्ज 30 दर्जे पर मुश्तमिल है। तो उसी की मिसाल जिक्र कर रहे हैं, रअईतु दर्जतल असदी, मैंने बुर्जे असद का दर्जा देखा, मैंने असद का दर्जा देखा, बुर्ज हो यानी उसका बुर्ज देखा। असद का दर्जा देख लें या असद का बुर्ज देख लें, एक ही बात है। असद के बुर्ज में कितने दर्जे? 30 दर्जे। और आप कह रहे हैं मैंने असद का दर्जा देखा, मालूम हुआ असद का एक जुज देखा। कुल कितने जुज हैं? 30 जुज हैं। तो दर्जतल असद ये क्या है? जुज। और बुर्जहू ऐ बुर्जल असद ये क्या है? कुल। ये क्या है? कुल। तो दर्जतुल असद ये है मुबदल मिनहू, और बुर्जहू ये क्या है? बदल। तवज्जो भी है कि नहीं? दर्जतुल असद क्या है? मुबदल मिनहू, और बुर्जहू ऐ बुर्जल असद ये क्या है? बदल। और मुबदल मिनहू जुज है बदल का। मुबदल मिनहू जुज है बदल का। बात समझ में आ गई? तो ये भी बदलुल इस्तेमाल की मिसाल है जिसमें मुबदल मिनहू जुज है बदल का। तो कहते हैं वयुम किनु अयूरद अली मिसाल ही मिसलु राय तू दर जतल असदी बुरजहू। और मुमकिन है कि इसके लिए ये मिसाल लाई जाए जैसे कि राय तू दर जतल असदी बुरजहू, मैंने असद का दर्जा यानी उसका बुर्ज देखा। فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِهَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ فِيهِ, इसलिए क्योंकि इस मिसाल के अंदर जो है इस मुनाकशा की गुंजाइश नहीं है। पहली मिसाल में तो आप मुनाकशा कर सकते थे कि कमर जो है वो फलक कमर का जुज नहीं बल्कि उसमें गड़ा हुआ है, उसमें लगा हुआ है। और यहां पर तो ये दर्जतुल असद वो जुज है किसका? अपने बुर्ज का। भाई तो कहते हैं फइन्नहु ला मजाल लिहादिहि अल-मुनाकशति फीही, इसलिए क्योंकि इस मिसाल के अंदर इस मुनाकशे की यानी इस बहस की गुंजाइश नहीं है। फइन्नल बुर्ज इबारतुन अन मजमूई दरजाती, इसलिए क्योंकि जो बुर्ज जो है वो इबारत होता है मजमूई दरजात से। वो जो दरजात का मजमूआ है 30 दरजात का जो मजमूआ है वो उसको बुर्ज कहते हैं। वह इन्नमा लम युजल, अच्छा सवाल सवाल यह कि इस किस्म को अलग क्यों नहीं बनाया? जी। एक बदलुल कुल था यानी बदलुल कुल लिमिनल कुल, दूसरा बदलुल बाज था। नहीं तवज्जो, जा जैदुन अखू का, जैद और अखू का दोनों का मदलूल एक। जैद जिस पूरी जात पे दलालत कर रहा है, अखू का भी उसी पूरी जात पर दलालत कर रहा है, तो ये अखू का बदलुल कुल है। और किससे आया? कुल से ही आया, जैद भी कुल और आगे अखू का भी कुल। तो क्या कहेंगे? बदलुल कुल ले मीनल कुल। दूसरी मिसाल, जरब तू जैदन रसहू, मैंने जैद को मारा यानी उसके सर को, तो रसे जैद ये क्या है? जैद का जुज है। तो जैद हुआ कुल और रसहू हुआ जुज, तो ये बदलुल बाज है मीनल कुल। किससे? कुल से। ये कुल से बदलुल बाज आया है। और ये जो मिसाल जिक्र की, रई तू दर्जत अल असदी बुर्जहू, मैंने दर्जा असद यानी उसका बुर्ज देखा, ये पहला क्या है? जुज। और दूसरा क्या है? कुल। तो यूं कहेंगे बदलुल कुल मीनल बाज या बदलुल कुल अनिल बाज, बदलुल कुल अनिल बाज इसका नाम होना चाहिए था, ये अलग किस्म होनी चाहिए थी। तो ये अलग किस्म क्यों नहीं बनाई? ये एक अलग किस्म होनी चाहिए थी, इसको अलग किस्म क्यों नहीं बनाया? अब उसका जवाब देने लगे हैं। वइन नमा लम युजअल हादल बदल किस्मन खामिसन, और इस बदल को पांचवीं किस्म नहीं बनाया गया बदल की। वलम युसम्मा बि बदलिल कुल अनिल बाज, और इसका नाम बदलुल कुल अनिल बाज नहीं रखा गया, यानी अलग किस्म भी नहीं बनाया और इसका अलग नाम भी नहीं रखा। लिकिल्लति ही व नुदरति ही, इसके कलील और नादिर होने की वजह से, क्योंकि ये वाली किस्म निहायत कलील है बल्कि नादिर है। भाई क्या है? नादिर है भाई, तो लिहाजा इसलिए इसको अलग किस्म नहीं बनाया गया। बल्कीला, बल्कि कहा गया है लि आदमी वुकूही फी कलामिल अरबी, कि ये कलाम अरब में वाकई ही नहीं हुआ। भाई ये बदलुल कुल अनिल बाजी ये कलाम अरब में आया ही नहीं है। कहते हैं भाई आया तो है, आपने मिसाल हमें बतला दी, रई तो दर्जतल असदी बुरजहू, कहते हैं भाई इसकी जो भी मिसालें हैं वो नहवी उलमा ने खुद बनाई हैं, कलाम अरब के अंदर हमें इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि अरब के फसीह और बलीग कलाम करने वाले या शुआरा ने इसको इस किस्म की मिसाल जिक्र की हो। ये तो बाद में नहवियों ने अपनी तरफ से बना ली, तो ये मस्नूई मिसालें हैं। सुन उनका क्या माना, बनाना, मस्नूई जिनको बनाया गया है। तो नहवी हजरात ने इन मिसालों को बनाया है, खुद कलाम अरब में हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें बदलुल कुल आए अनिल बाजी, किससे, बाज से। तो कहते हैं बल्कील अली आदमी वकूई ही फी कलाम अरबी, बल्कि कहा गया है कि कलाम अरब में वाकई न होने की वजह से, यानी वाकई न होने की वजह से इसको अलग किस्म भी नहीं बनाया और इसका अलग नाम भी नहीं रखा गया। फई नहाद हिल अमसिलता मसनूआतुन, इसलिए क्योंकि ये मिसालें जो हैं ये मसनूई हैं, यानी इनको बनाया गया है, नहवियों ने बनाया है, कलाम अरब में हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। आगे देखिए कहते हैं वर्रा बेओ, जी मतन मतन देखिए, वर्रा बेओ अन तकसीद इलैही बाद अन गलित तबी गैरी ही, वर्रा बेओ अन तकसीद इलैही बाद अन गलित तबी गैरी ही। और चौथी किस्म बदल की जो है वो जो बदल गलत है कि अन तकसीद इलैही, कि आप उस बदल का इरादा करें, बाद अन गलित था बिगैर ही, बाद उसके कि जब आपने गलती की बिगैर ही इसके अलावा के साथ। जा अनी जैदुन अमरुन, मैं क्या कहना चाहता था, जा अनी अमरुन और मैंने क्या कहा, मैंने जैद कहा। तो देखो ये जो मैं अमर, ये जो बदलुल गलत को लाया, क्यों लाया, इसका मैंने इरादा क्यों किया, बाद इसके कि जब मैंने इसके अलावा के साथ गलती की थी, इसके अलावा यानी जैद का लफ्ज मैं ले आया था। तो ये माना है वर्राबिउ अन तक्सीद इलैही, और चौथा बदल जो है वो है कि आप उसका इरादा करें, बाद अन गलित तबी गैरी ही, बाद उसके कि जब आप उसके अलावा के साथ गलती करें। गलिता यगलतु बाब समिया से है, बाद इसके कि जब आप उसके अलावा के साथ गलती करें। अब इसको शरा के साथ देखिए, वर्राबिउ और चौथी किस्म जो है अई बदलुल गलती, यानी जो बदलुल गलत है, अन तकसीद अई अन यकून बि अन तकसीद अंत इलैही, वो ये कि आप जो है इरादा करें इलैही अई इलल बदली, किसकी तरफ, बदल की तरफ। भाई मतन में आया था अन तकसीद, शारह जामी फरमा रहे अई यकून बि अन तकसीद बा ले आए, बतलाना ये चाहते हैं कि यहां बा जा रहा महजूफ है मतन के अंदर, भाई भी अन तकसीदा, और ये कलाम अरब में आम राइज है अन और अन्ना से बा जार्रा को हजफ कर लेते हैं जी। अन और अन्ना से बा जार्रा को हजफ कर देते हैं। तो कहते हैं चौथी किस्म ये है अन तकसीदा अई अन यकून अभी अन तकसीदा अंत इलैही, कि आप जो है इरादा करें इलैही अई इलल बदली, बदल की तरफ, मिन गैर एतबारी मुलाबसतिम बैनहुमा, बगैर मुलाबसत का एतबार किए उन दोनों के दरमियान। भाई देखिए पहले लफ्ज लाए वो गलती की वजह से लाए हैं, और फिर उसके बाद आप बदलुल गलत लेकर आए हैं, तो ये जो आप बदलुल गलत लाए हैं इसमें और मुबदल मिनहू में कोई ताल्लुक और मुनासबत नहीं है, क्योंकि वो तो गलती की वजह से आप लाए थे। बात समझ में आ गई, तो बदलुल गलत लाते हैं बगैर मुनासिबत का एतबार किए हुए, क्योंकि यहां मुनासिबत मलहूज ही नहीं है, ये तो गलती की वजह से आपको लाना पड़ा। ये माना है आप इरादा करते हैं इलल बदली, बदल का, मिन गैर एतबारी मुलाबसतिम बैनहुमा, बगैर उनके दरमियान मुलाबसत और ताल्लुक का एतबार किए हुए, बाद अन गलित था बिगैर ही ऐ बिगैर इल बदली, बाद इसके कि आप गलती करें बदल के अलावा के साथ। वह वल मुबदल मिनहू, और गैर बदल क्या है, वो मुबदल मिनहू है, यानी वो जो मुबदल मिनहू में आपने गलती की है तो उसकी वजह से आपको ये बदल लाना पड़ा जी। तो आपने गलती की गैर बदल के साथ, और वो गैर बदल क्या था जो आपने गलती की, वो मुबदल मिनहू है जी। ये माना है बिगैर ही अ बिगैर इल बदली, गैर बदल के साथ आपने गलती की, वह वल मुबदल मिनहू, और वो क्या है, मुबदल मिनहू है। मतन मतन आगे देखिए भाई, व यकून नानी मारिफा तैनी व नकिरा तैनी व मुख्तलिफैनी, और बदल और मुबदल मिनहू दोनों मारिफा भी हो सकते हैं, दोनों नकिरा भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। बदल और मुबदल मिनहू ये दोनों मारिफा भी हो सकते हैं, मुबदल मिनहू भी मारिफा, बदल भी मारिफा, दोनों नकेरा भी हो सकते हैं, मुबदल मिनहु भी नकेरा, बदल भी नकेरा, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं कि पहला मारिफा हो और दूसरा नकेरा, या पहला नकेरा हो और दूसरा मारिफा हो। भाई तो यह माना है कि वह यकूनानी मारिफा तैनी, और बदल और मुबदल मिनहु दोनों जो हैं मारिफा तैनी, मारिफा हो सकते हैं, वह नकेरा तैनी और नकेरा हो सकते हैं, वह मुख्तलिफनी और मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी दोनों में से एक मारिफा हो और एक नकेरा हो। अब इसको शरा के साथ देखिए, वह यकूनानी अल बदलु वल मुबदलु मिनहु, यानी बदल और मुबदल मिनहु जो हैं वो दोनों हो सकते हैं मारिफा तैनी, मारिफा भी। नहवु जुरिबा जैदुन अखू का, जुरिबा जैदुन, पिटाई की गई जैद की अखू का, यानी आपके भाई की। मुबदल मिनहु क्या? जैद। अब आपने मुझे बताना है आगे सारी मिसालों में मुबदल मिनहु क्या है? जैद। और बदल क्या है? अखू का। और जैद भी मारिफा और अखू का, ये अख मुजाफ हो रहा है जमीर की तरफ, तो ये भी क्या है? मारिफा। तो दोनों मारिफा हैं। वन नकेरा तैनी, और दोनों नकेरा भी हो सकते हैं। नहुजा अनी रजुलुन गुलामुन लका, जा अनी रजुलुन, आया मेरे पास एक आदमी, गुलामुन लका यानी आपका गुलाम। गुलामुन नकेरा है और नकेरा के बाद लका जार मजरूर आया, और जार मजरूर नकेरा के बाद आए और किसी से न जुड़ रहा हो तो वो उसी के लिए सिफत बनता है। और सिफत वैसे ही बनेगा या मुताल्लक के साथ जुड़कर सिफत बनेगा? मुताल्लक के साथ जुड़ेगा। तो गुलामुन लका अय गुलामुन साबितुन लका, ऐसा गुलाम जो आपके लिए साबित है यानी आपका है। तवज्जो है। तो आगे गुलाम मौसूफ और साबितुन लका उसकी सिफत, और नकेरा की सिफत आ जाए, इसे नकेरा में तख्सीस तो आती है लेकिन वो मारिफा नहीं बनता भाई, अभी भी वो नकेरा का नकेरा ही है। तो रजुलुन मुबदल मिनहु भी नकेरा, और गुलामुन लका ये भी क्या? बदल भी क्या है? नकेरा है। तो ये मिसाल है जिसमें दोनों नकेरा हैं। तो जा अनी रजुलुन गुलामुन लका, इसमें मुबदल मिनहु और बदल दोनों नकेरा हैं। वह मुख्तलिफैनी, और कभी दोनों क्या हो सकते हैं? मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जैसे नहु बिन नासियति नासियतिन कादिबतिन, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लनस्फअन बिन नासियति नासियतिन कादिबतिन, लनस्फअन बिन नासियति, याद रखो लनस्फअन असल में है लनस्फअन, नून है, नून है लनस्फअन। सफा यस्फाउ के माने होते हैं बालों से पकड़ना किसी को या बालों से खींचना किसी को, इसको क्या कहते हैं? सफा यस्फाउ। और लनस्फा ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, और लनस्फअन ये नून ताकीद के लिए आया है, नून खफीफा और सकीला आपने पढ़े हैं ताकीद के लिए आते हैं लनस्फअन। और फिर आगे क्या था? बिन नासियती, और आपने पढ़ा है नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वो नून किससे बदल जाता है? मीम से। तो लनस्फअन बिन नासियती, तवज्जो है। और कुरान का रस्मुल खत अपना रस्मुल खत है, तो कुरान में लनस्फअन अलिफ के साथ लिखा गया है। किसके साथ? अलिफ के साथ। तो आप परेशान होंगे कि ये कौन सा सीगा है, तो याद रखना ये वही नून खफीफा है जिसको अलिफ की सूरत में लिख दिया गया है भाई, और आयन पर तनवीन डाल दी गई। तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लनस्फअन बिन नासियती, हम पकड़ेंगे उनको बिन नासियती पेशानी के बालों से। याद रखो नासिया कहते हैं ये सर का अगला हिस्सा, ये माथे के ऊपर जहां सर के बाल शुरू होते हैं, तो ये जो अगला हिस्सा है पेशानी के बकदर, ये यूं समझें आप अपने हाथ को ये पेशानी से ऊपर सर के अगले हिस्से पर रखें, ये सारा नासिया है। ये जो आपके हाथ के नीचे आ गए बाल आ गए, ये क्या है? नासिया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं लनस्फअन बिन नासियति, हम उनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे, नासियतिन कादिबतिन, ऐसी नासिया जो झूठी है, जो झूठ बोलने वाली है। तवज्जो है। तो रिवायात में आता है कि मुजरिमों को क्यामत के दिन पेशानी के बालों और पांव से पकड़कर जहन्नुम में फेंका जाएगा। अल्लाह हम सब की जहन्नुम से हिफाजत फरमाए भाई। तो मुजरिमों को कहां से पकड़ा जाएगा? पेशानी के बालों से और पांव से पकड़कर जहन्नुम में फेंका जाएगा। पांव से तो इसलिए पकड़ा जाएगा कि इंसान पांव के जरिए गुनाह की तरफ चल कर जाता है गुनाह करने के लिए। और ये पेशानी के बालों से क्यों पकड़ा जाएगा, याद रखिए आज आपको मैं इसकी साइंसी वजह बतलाता हूं। वजह यह है, ये पूरे सर के अंदर दिमाग है और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक आगे वाला हिस्सा है नासिया में, एक दरमियान वाला हिस्सा है सर के ऊपर, और एक आखिरी हिस्सा है गर्दन की तरफ पीछे की जानिब। तो ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं और इनमें से ये जो आगे वाला हिस्सा है, जो नासिया के नीचे दिमाग वाला हिस्सा है, ये साइंसदान कहते हैं कि जो इंसान के जहन में जो भी इरादे बनते हैं, ये सारे इरादे ये सर के अगले हिस्से में बनते हैं। तो मालूम हुआ गुनाहों के जो ख्यालात भी आते हैं, ये सर के अगले हिस्से में ख्यालात आते हैं और ये इरादे बनते हैं भाई, जो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो चूंकि दिमाग का ये हिस्सा है जो गुनाहों पर इंसान को उकसाता है और गुनाहों के मंसूबे बनाता है और गुनाहों की तरफ इंसान को ले जाता है, तो इसलिए इंसान को इस पेशानी के बालों से भी पकड़ा जाएगा और इसी तरह उसको कदमों से भी पकड़ा जाएगा और जहन्नुम में फेंका जाएगा। बिन नासियती नासियतिन कादिबतिन, मुजरिमों को हम पकड़ेंगे बिन नासियती, पेशानी के बालों से यानी सर के अगले हिस्से के बालों से, नासियतिन कादिबतिन, ऐसी नासिया कादिबतिन जो झूठी है यानी खताकार है, खता करने गुनाह करने वाली है। माना समझ में आया, काजिबा का क्या माना, झूठी, मुराद क्या है, खताकार है, गुनाह करने वाली है। तो देखो यहां आया बिन नासियती, ये अन्नासिया देखो मुआरफ बिल्लाम है और याद रखो ये मुबदल मिनहू है, और आगे नासियतिन ये बदल है, ये क्या है, बदल, और नासियतिन मौसूफ है और काजिबतिन इसकी सिफत है, तो ये बदल की सिफत है काजिबतिन। अन्नासिया अलिफ लाम के साथ ये क्या है, मुबदल मिनहू, और नासियतिन ये क्या है, बदल है, तवज्जो है, ये बदल है। और देखो मुबदल मिनहू है मारिफा और बदल जो है नासियतिन वो नकेरा है भाई, बात समझ में आ गई। तो देखो बदल और मुबदल मिनहू तारीफ और तनकीर में मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। वजा अराजुलुन गुलाम ज़ैदिन, जा अराजुलुन आया एक आदमी, गुलाम ज़ैदिन यानी कि जैद का गुलाम, तो रजुलुन क्या है, मुबदल मिनहू, और गुलाम ज़ैदिन ये मुजाफ मुजाफिल मिलकर बदल, और ये मारिफा है, मुबदल मिनहू है नकेरा और बदल है मारिफा। पिछली मिसाल में बिन नासियति नासियतिन कादिबतिन, वहां मुबदल मिनहू मारिफा था और बदल नकेरा था, और यहां मुबदल मिनहू नकेरा है और बदल मारिफा है। तो दोनों की मिसालें साहिब जामी ने जिक्र फरमा दी। आगे देखिए कहते हैं, वईदा कानल बदल नकेरतम मुबदलतम मिम मारिफतिन फन्नातु, मतन मतन देखिए कहते हैं, वईदा कानल नकेरतम मिम मारिफतिन फन्नातु, और जब नकेरा जो है वो बदल बने मिम मारिफतिन किससे, मारिफा से, फन्नातु ऐ फन्नातु वाजिबुन, तो फिर सिफत का लाना वाजिब है। इधर देखिए भाई, पहले जो आए वो कहलाता है मुबदल मिनहू, जो बाद में आए वो क्या कहलाता है, बदल, और असल मकसूद क्या है, बदल, लिहाजा बदल को आला होना चाहिए, बदल को क्या होना चाहिए, आला, लिहाजा अगर मुबदल मिनहू हो नकेरा और बदल क्या हो मारिफा, तो बदल ही तो मकसूद है, तो वो आला हुआ, तो ये सूरत तो ठीक है। लेकिन अगर मुबदल मिनहू हो मारिफा और बदल हो नकेरा, तो ये तो मकसूद अदना हो गया, मकसूद अदना हो गया। तो इस सूरत में फिर बदल की सिफत लाना वाजिब है जी। इस सूरत में बदल की सिफत लाना वाजिब है, इसीलिए आपने ऊपर मिसाल पढ़ी बिन नासियती नासियतिन कादिबतिन, अन्नासिया ये क्या है, मुबदल मिनहू और ये गैर मकसूद, और नासियतिन ये क्या है, बदल और ये मकसूद है और ये नकेरा है, तो गैर मकसूद आला हुआ और मकसूद अदना हुआ, तो लिहाजा उसकी सिफत लाना वाजिब है, इसीलिए नासियतिन की सिफत काजिबतिन लाई गई। बात समझ में आ गई। और याद रखना यह सिर्फ बदलुल कुल में है यह जाब्ता। बदलुल कुल मिनल कुल जब भी आएगा, अगर मुबदल मिनहू है मारिफा और बदल क्या है नकेरा, तो फिर उस नकेरा की सिफत लाना वाजिब है। जाब्ता समझ में आया, क्या जाब्ता हुआ? अगर मुबदल मिनहू हो मारिफा और बदल क्या हो नकेरा, तो मुबदल मिनहू तो गैर मकसूद है और बदल मकसूद है, तो मकसूद का अदना होना लाजिम आएगा, लिहाजा इस सूरत में बदल की सिफत लाना वाजिब है। इसीलिए नासियतिन काजिबतिन ये सिफत लाई गई नासिया की। भाई तो कहते हैं वह इदा काना नकेरा तम मी मारिफतिन फन्नातू, और जब बदल जो है वो नकेरा हो मी मारिफतिन मारिफा से, फन्नातू ऐ फन्नातू वाजिबुन तो सिफत वाजिब है। फन्नातू ये नात मुबतदा है और वाजिबुन उसकी खबर महजूफ है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए मतन मतन मिसलु बिन नासियति नासियतिन काजिबतिन, जैसे कि इस मिसाल में है अन्नासिया यह मुबदल मिनहू है और नासियतिन आगे नकेरा बदल आ रहा है, तो उसकी सिफत काजिबतिन लाई गई। भाई अब इसको शरा के साथ देखिए, वह इदा कानल बदलु नकेरतन, और जब बदल जो है वो नकेरा हो मुबदलतम मिम मारिफतिन, जिसको बदल बनाया गया है मिम मारिफतिन किससे मारिफा से, फन्नातु ऐ नातुल बदलिन नकेरति वाजिबुन, तो वो बदल जो नकेरा है उसकी सिफत वाजिब है। लिअल्ला यकूनल मकसूदु अनकस मिन गैरिल मकसूद मिन कुल्लि वजहिन, लिअल्ला यकूनल मकसूदु अनकसा, ताकि कहीं वो जो मकसूद है वो नाकिस ना हो जाए, मिन गैरिल मकसूदी किसके मुकाबले में, गैर मकसूद यानी मतबू के मुकाबले में, मिन कुल्लि वजहिन हर एतबार से, हर एतबार से कहीं नाकिस न हो जाए। भाई हर एतबार से नाकिस क्या मतलब, माना यह है कि मुबदल मिनहू वो है मारिफा और बदल है नकेरा, तो एक तो जो मकसूद है उसको पहले आना चाहिए था, लेकिन यहां पर मुबदल मिनहू जो गैर मकसूद है उसको पहले लाया गया और बदल को बाद में, फिर मुबदल मिनहू को मारिफा भी ले आए और बदल को नकेरा भी ले आए, तो गोया हर एतबार से ही आपने मकसूद को क्या कर दिया, नाकिस कर दिया, तकदीम के अंदर भी मुअख्खर कर दिया और तारीफ व तनकीर में भी उसको कम दर्जा दिया। तो कहते हैं ली अल्लाह यकून अल मकसूद अन कसम इन गैर अल मकसूद मिन कुल्ल वजहिन, ताकि कहीं वो जो मकसूद है वो नाकिस ना हो जाए, मिन गैर अल मकसूद गैर मकसूद के मुकाबले में, मिन कुल्ल वजहिन हर एतबार से, फअतौ फीहि बिसिफतिन, तो लिहाजा उसके अंदर सिफत लेकर आए उस बदल में, तकूनु कल जाबिरी, और ये सिफत जो है जबीरा बन जाएगी, तलाफी करने की तरह हो जाएगी। मुबदल मिनहू मारिफा था और बदल नकेरा था, तो उसकी सिफत लाई गई, तो सिफत लाने से बदल के अंदर तख्सीस आ गई और तख्सीस की वजह से वो मारिफा तो न बना लेकिन मारिफा के करीब हो गया, और करीब इला शय फी हुक्मी शय होती है, तो गोया आपने उस कमी की तलाफी कर दी, गोया उसको मारिफा ही बना दिया, यूं समझो, क्योंकि करीब इला शय फी हुक्मी शय होती है। क्या बात हुई, गैर मकसूद मुबदल मिनहू मारिफा था और बदल क्या ले आए नकेरा, तो फिर उसकी सिफत लाई जाएगी, सिफत की वजह से उस बदल नकेरा के अंदर क्या आ जाएगी तख्सीस, और तख्सीस की वजह से ये बदल मारिफा तो न बना लेकिन मारिफा के करीब हो गया, और करीब इला शय फी हुक्मी शय होती है, तो गोया आपने इसको मारिफा ही एक लिहाज से बना दिया, तो वो जो कमी थी वो जो नुकसान था आपने उसकी तलाफी कर दी, किसके जरिए, इस सिफत के जरिए, तो ये सिफत जाबिर है यानी तलाफी करने वाली है, जाबिर का क्या माना, तलाफी करने वाली है, जबीरा बनने वाली है। भाई देखो जबीरा, जबीरा कहते हैं वो जो टूटी हुई हड्डी को दुरुस्त करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए उस पर जो वो पट्टियां बांधी जाती हैं लकड़ी की तख्तियों के साथ, लकड़ी की बारीक बारीक तख्तियां साथ बांधी जाती हैं, उसको जबीरा कहते हैं। तो जैसे उसके जरिए टूटी हुई हड्डी की इस्लाह होती है, तो यहां पर भी जो सिफत लाई जाएगी उस सिफत के जरिए वो जो बदल के अंदर कमी थी नकेरा होने की, वो इस सिफत की वजह से उसकी इस्लाह हो जाएगी, यानी उसमें उसकी कुछ ना कुछ तलाफी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो जाबिर जिसके जरिए दुरुस्तगी हो जाए, जिसके जरिए इस्लाह हो जाए। फअतौफी ही भी सिफतिन, तो उसके अंदर फिर अरब जो है वो सिफत लेकर आए, तकूनु कल जाबिरी, ताकि वो सिफत जो है वो दुरुस्तगी करने वाली हो, इस्लाह करने वाली हो। लिमा फीही मिन नक्सिन नकारती, उस चीज की जो उसके अंदर है, यानी नकेरा होने का नुकसान, वो जो उसके अंदर नकेरा होने का नुकसान था, ताकि उसकी तलाफी हो जाए, उसकी इस्लाह हो जाए। भाई मिसलु बिन नासियतिन नासियतिन कादिबतिन, जैसे बिन नासियति नासियतिन कादिबतिन, ये नासिया की सिफत काजिबतिन इसीलिए लाई गई भाई। वयकूनानि ज़ाहिरैन, जी अब मतन मतन देखिए, वयकूनानि ज़ाहिरैन, और ये बदल और मुबदल मिनहू दोनों इसमें जाहिर भी हो सकते हैं। व मुज़मरैन, और दोनों जमीरें भी हो सकती हैं। व मुख्तलिफैन, और दोनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, कि दोनों में से एक जमीर हो और दूसरा इसमें जाहिर हो। वला युबदलु ज़ाहिरुम मिन मुज़मरिन बदल अल-कुल्ल इल्ला मिन अल-गाइबी, और बदल जो है इसमें जाहिर को नहीं लाया जाता मिन मुजमरिन जमीर से। बदल अल कुल्ली, कौन सा बदल? बदल उल कुल। तवज्जो है, देखिए पहले जमीर आई और ये जमीर जो है मुबदल मिनहू है, और आगे आप उससे बदल लाना चाहते हैं, और बदल किसको लाते हैं? बदल इसमें जाहिर को आप लाना चाहते हैं। तो याद रखो इस सूरत में ये जमीर गायब की होना जरूरी है, मुखातब या मुतकल्लिम की जमीर से आप इसमें जाहिर को बदल नहीं बना सकते
जी।
आप इसमें जाहिर को बदल बनाना चाहते हैं किससे? जमीर से। तो वो जमीर कौन सी होनी चाहिए? गायब की होनी चाहिए, मुतकल्लिम और मुखातब की जमीर नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों, क्या वजह है? वजह यह कि अगर मुबदल मिनहू जमीर है और बदल आप लाए इसमें जाहिर, असल मकसूद क्या होता है? बदल, यानी वो इसमें जाहिर मालूम हुआ मकसूद है। और याद रखना, पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बतलाया था कि मारिफा की जो अकसाम हैं उनमें सबसे ज्यादा तारीफ जमीरों में होती है
जी।
सबसे ज्यादा तारीफ जमीरों के अंदर होती है, उसके बाद आलम वगैरह बाकी चीजों का दर्जा है। तो सबसे पहला दर्जा तारीफ के अंदर जमीरों का है, और फिर जमीरों के अंदर भी सबसे ज्यादा तारीफ मुतकल्लिम की जमीर में होती है। इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को पहचानता है, उसके बाद मुखातब की जमीर का दर्जा है, और गायब की जमीर का तीसरा दर्जा है। तवज्जो है, और याद रखो जो इसमें जाहिर होता है यह भी गायब के दर्जे में है
जी।
ये भी जमीर गायब के दर्जे में है। बात समझ में आ गई? क्योंकि मुतकल्लिम अपने बारे में भी जमीर इस्तेमाल करता है कि मैं आज बाजार गया था, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। बात समझ में आ रही? नाम नहीं लेता, मसलन मुतकल्लिम का नाम जैद है, वो यूं नहीं कहेगा जैद आज बाजार गया था, जैद ने ये किया, जैद ने वो किया। नहीं, वो अपने लिए जमीर लाएगा, मैंने यूं किया। मुखातब का भी नाम नहीं लिया जाता, उसके लिए भी जमीर इस्तेमाल की जाती है। आपका क्या हाल है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहां गए हुए थे? तवज्जो है। हां, गायब का नाम लिया जाता है, और फिर एक दफा नाम लेने के बाद फिर उसके लिए जमीर लाई जाती है। तो इसमें जाहिर किसके दर्जे में है? गायब के दर्जे में है, क्योंकि मुतकल्लिम और मुखातब के लिए जमीर इस्तेमाल की जाती है। तो अब आप जमीर से इसमें जाहिर को बदल बनाना चाहते हैं। अगर आप जमीर ले आए मुतकल्लिम की और इसमें जाहिर को बदल बनाया, तो इसमें जाहिर का दर्जा तो मुतकल्लिम की जमीर से कम दर्जे का है, तो यह तो मकसूद क्या हो जाएगा? नाकिस हो जाएगा। और या इसी तरह अगर आप मुखातब की जमीर लाए हैं मुबदल मिनहू और आगे इसमें जाहिर को उससे बदल बनाना चाहते हैं, तो भी सूरत में बदल का दर्जा क्या हो जाएगा? जो मकसूद है वो कम दर्जे का हो जाएगा। लिहाजा जब भी आप जमीर से इसमें जाहिर को बदल बनाना चाहें, तो वो जमीर गायब की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जाहिर भी उसी गायब के दर्जे में है। ये माना है वला युबदलु ज़ाहिरुम मिन मुज़मरिन बदल अल कुल्ली, और जमीर से इसमें जाहिर को बदल उल कुल नहीं लाया जाता इल्ला मिन अल गाइबी, मगर गायब की जमीर से। नहु ज़रबतुहु ज़ैदन, ये ज़रबतुहु ये हा जमीर ये मुबदल मिनहू, और जैदन उससे बदल। जरब तुहू कौन सी जमीर है? मफूल की मनसूब है, इसलिए जैदन बदल भी क्या है, मनसूब है। और यह जरबतुहु की जमीर पीछे मसलन अखूका का लफ्ज आया था, जरबतुहु पीछे क्या आया था, मसलन जुमले यहां पर अखूका का लफ्ज मिला लो, अखूका जरबतुहु जैदन, अखूका आपका भाई, जरबतुहु यहां जमीर किसको राजे, अखूका को राजे, जरबतुहु मैंने आपके भाई की पिटाई की, जैदन यानी के जैद की, तो जमीर से इसमें जाहिर को बदल बनाया और जमीर गायब की है भाई। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए, कहते हैं वयकूना निजाहिरैनी, और बदल और मुबदल मिनहू दोनों इसमें जाहिर हो सकते हैं। नहु जा अनी जैदुन अखू का, जैदुन क्या है मुबदल मिनहू, अखू का यह क्या है बदल, और दोनों इसमें जाहिर हैं, दोनों में से एक भी जमीर नहीं। वह मुजमराइनी, और दोनों जमीरें भी हो सकती हैं बदल और मुबदल मिनहू। नहु मिसाल के तौर पर अज़ैदून लकीतुहुम इयाहुम, अज़ैदून लकीतुहुम इयाहुम, भाई तवज्जो है, वो सब जैद, अज़ैदून वो सब जैद, लकीतुहुम मैंने उन सब से मुलाकात की, इयाहुम वो सब, तवज्जो से समझ लो इस मिसाल को वरना फिर आप बाद में परेशान होंगे। याद रखो ये हुम जमीर, इनमें से एक जमीर अज़ैदूना को राजे है, हुम राजे कर लो या इयाहुम, दोनों जमीरों अज़ैदूना को राजे नहीं हो सकती। अगर दोनों ही अज़ैदूना को राजे हैं तो फिर ये इयाहुम ताकीद बन जाएगी हुम जमीर के लिए। लकीतु फेल बा फाइल है, तवज्जो से इबारत पे नजर रखो, लकीतु फेल बा फाइल है, ता जमीर ये फाइल है, और हुम जमीर जो साथ जुड़ी हुई है ये जमीर मनसूब मुत्तसिल है, और इयाहुम ये मनसूब मुनफसिल है। तो अगर दोनों जमीरें जैद को राजे हैं तो ये तो दूसरी जमीर पहली के लिए ताकीद बन जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है एक लफ्ज को जब दोबारा जिक्र किया जाए तो ये उसकी क्या कहलाती है, ताकीद। तवज्जो है, लिहाजा याद रखना, यहां उलमा मुहशी हजरात फरमाते हैं कि यहां मिसाल के अंदर इखवा का जिक्र भी होना चाहिए था, मिसाल यूं होनी चाहिए थी, अज़ैदून इखवतू का ए मुखातब, अज़ैदून इखवतू का, वो सब जैद आपके भाई हैं, अख की जमा क्या इखवा, अज़ैदून वो सब जैद इखवतु का आपके भाई हैं, लकीतुहुम मैंने उन सब जैदों से मुलाकात की, इयाहुम वो जो आपके भाई हैं, तो एक हुम जमीर किसको लौटाओ जैद को, और दूसरी इयाहुम किसको लौटाओ इखवा को। तवज्जो है, जैद पहले है तो हुम जमीर पहली उसको लौटा दो, और अगर इखवा पहले था तो पहली जमीर उसको लौटा दो। इखवतु का ज़ैदूना यूं भी कह सकते हैं, आपके भाई वो सब जैद हैं, तवज्जो है जी। तो बहरहाल एक जमीर अज़ैदूना को लौटाएंगे और दूसरी जमीर इखवा को लौटाएंगे, अब ताकीद नहीं, क्योंकि एक जमीर और चीज को लौट रही है और दूसरी जमीर दूसरी चीज को लौट रही है, अलबत्ता दोनों का मदलूल एक ही है, दोनों का इखवतु का ये जिन जातों पर दलालत कर रहे हैं, अज़ैदूना भी उन्हीं जातों पर दलालत कर रहे हैं, तो दोनों का मदलूल एक है। ये मिसाल समझ में आ गई तो ये तुलबा परेशान होते हैं कि ये तो ताकीद लग रही है भाई, आप हमें हम अभी ताकीद पढ़कर आए हैं तो ये भी ताकीद लग रही है, मैंने बतलाया कि दोनों का मर्जह अलग अलग है। लिहाजा मुहशी हजरात फरमाते हैं कि शारह जामी को यूं कहना चाहिए था, अज़ैदून इखवतु का लकीतुहुम इयाहुम, तो पहली लकीतुहुम ये हुम जमीर अज़ैदूना को राजे और दूसरी इयाहुम जमीर इखवतुका को राजे कर दें, अब दोनों जमीरों का मर्जे अलग अलग, अब ये ताकीद नहीं बन सकती, अब ये बदल और मुबदल मिनहू ही बनेंगी। आगे देखिए वह मुख्तलिफैनी, या वो दोनों क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे बदल और मुबदल मिनहू, यानी एक जमीर होगा और दूसरा इसमें जाहिर। नहु अखू का, अखू का आपका जो भाई है, ज़रबतुहु मैंने उसकी पिटाई की, जैदन यानी जैद की, तो ज़रबतुहु की हा जमीर किसको राजे, पीछे जो अखू का आया, और जैदन उसका नाम है तो ये उसके लिए क्या बन गया बदल, तो मुबदल मिनहू क्या है जमीर, और जैदन इसमें जाहिर क्या है बदल, अगली मिसाल में इसका अक्स होगा, मुबदल मिनहू इसमें जाहिर होगा और बदल जमीर होगी। जैसे देखो वह अखू का, और आपका जो भाई है, जाराब तु जैदन, मैंने पिटाई की जैद की, इयाहू यानी आपके भाई की। ये इयाहू जमीर लौट रही है अखू का जो पीछे गुजरा, तो जैदन ये मुबदल मिनहू और इयाहू ये बदल, और ये जमीर किसको लौट रही है, अखू का को। अखू का जरबत जैदन इयाहू, आपका भाई के पिटाई की मैंने जैद की यानी आपके भाई की। तो इसमें जाहिर क्या है, मुबदल मिनहू, और जमीर क्या है, बदल है। आगे देखिए, वला युबदलु जाहिरुम मिन मुजमरिन बदलल कुल्ली, और जमीर से इसमें जाहिर को बदलुल कुल नहीं लाया जाएगा, इल्ला मिनल गाइबी मगर जमीर गाइब से, नहु जरबतुहु जैदन, नहु जरबतुहु जैदन ऐ अखू का जरबतुहु जैदन, यहां अखू का भी होना चाहिए भाई। तो जरब तू की हाजमीर अखू का को राजे होगी, अखू का जरब तू आपका भाई के, मैंने आपके भाई की पिटाई की, जैदन यानी के जैद की। ले अनल मुजमर अल मुतकलिम अल मुखातब अकवा व अखस दलालतम मिन जाहिरी, इसलिए क्योंकि इस मुतकलिम और मुखातब की जो जमीर है अकवा, वो ज्यादा कवि है, व अखस्सु और वो ज्यादा खास है, दलालतन दलालत के एतबार से, मीना जाहिरी किसके मुकाबले में, इसमें जाहिर के मुकाबले में। फला उब दिला जाहिर मिन हुमा, अगर इसमें जाहिर को बदल लाया जाए इन दोनों से, बदल अल कुल्ली, कौन सा बदल, बदल उल कुल लाया जाए, यल जमु तो लाजिम आएगा, अं यकून अल मकसूद अन कसम इन गैर अल मकसूदी, कि वो जो मकसूद है वो कम दर्जे का हो जाए गैर मकसूद के मुकाबले में, मा कौन मदलूल हिमा वाहिदन, बावजूद इसके कि दोनों का मदलूल एक है, मदलूल दोनों का एक है, दोनों एक ही जात पर दलालत कर रहे होंगे, लेकिन जो मकसूद है उसका दर्जा गैर मकसूद से कम हो जाएगा, और ये सही नहीं है भाई। और ये किस में होगा, सिर्फ बदलुल कुल में, क्योंकि जो जमीर का मदलूल वही इसमें जाहिर यानी बदल का, मुबदल मिनहू क्या है मसलन मुतकलिम या मुखातब की जमीर, और बदल क्या है इसमें जाहिर, और दोनों एक ही जात पर दलालत कर रहे हैं, दोनों एक ही जात पर दलालत कर रहे हैं, तो लिहाजा इसके अंदर फिर मकसूद को आला होना चाहिए यानी बदल को, लेकिन वो तो कम दर्जे का है, जमीर उससे आला है तारीफ के अंदर, तो दोनों का जब मदलूल एक हो तो फिर उस वक्त इसमें जाहिर का नाकिस होना समझ में आएगा। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है, इसमें जमीर मसलन मुतकलिम की जमीर है, क्या है, मुतकलिम की जमीर है, और मुतकलिम की जमीर से पूरा मुतकलिम मुराद है, आगे इसमें जाहिर आया उससे भी पूरा मुतकलिम मुराद है। तो अब देखो, जमीर जो है वो मुबदल मिनहू है, वो आला दर्जे की, और इसमें जाहिर जो बदल बन रहा है वो कम दर्जे का है, और पता कैसे चल रहा है कि कम दर्जे का है, क्योंकि दोनों का मदलूल एक है, जब दोनों का मदलूल एक है अब पता चलेगा कि एक में नुकसान है एक में नुकसान नहीं है, अगर दोनों का मदलूल ही अलग अलग हो फिर तो कमी नुकसान का नहीं पता चल सकता, एक लफ्ज किसी चीज पे दलालत कर रहा है दूसरा लफ्ज दूसरी चीज पे दलालत कर रहा है, फिर तो हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सा आला दर्जे का है कौन सा कम दर्जे का, तो यह कमी सिर्फ किस वक्त जाहिर होगी, जब दोनों का मदलूल एक हो और वो सिर्फ बदलुल कुल में होता है, बदलुल कुल में, बदलुल बाज में भी नहीं, दोनों का मदलूल एक नहीं होता, बदलुल इस्तेमाल में भी दोनों का मदलूल एक नहीं होता, और बदलुल गलत में भी नहीं होता। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं फला उबदिला जाहिरु मिन हुमा बदल अल कुल्ली, अगर इन दोनों जमीरों से यानी मुतकलिम और मुखातब की जमीर से बदल लाया जाए बदल उल कुल भाई, यल जमु अयकून अल मकसूद अन कसम इन गैर अल मकसूदी, तो लाजिम आएगा कि वो जो मकसूद है वो कम दर्जे का हो जाए गैर मकसूद के मुकाबले में, मा कौनी मदलूल हिमा वाहिदन, बावजूद इसके कि दोनों के मदलूल जो है वो एक ही चीज है, बेखिलाफ ही बदल बाजी वल इस्तेमाल वल गलती, बखिलाफ बदलुल बाज बदलुल इस्तेमाल और बदलुल गलत के, फइनल मानिया फीहा मफकूदुन, इसलिए क्योंकि ये वाला मानिया जो है वहां पर मफकूद है, मफकूद का माना है न होना, क्योंकि ये वाला मानिया वहां नहीं है, فَإِنَّ الْمَانِعَ فِيهَا مَفْقُودٌ, اس لیے کیونکہ یہ والا مانع وہاں نہیں ہے. اِذْ لَيْسَ مَدْلُولُ الثَّانِي فِيهَا مَدْلُولَ الْأَوَّلِ, اس لیے کیونکہ وہاں پر ثانی کا مدلول اول کا مدلول نہیں ہوتا. بھئی ادھر دیکھیے, اگر آپ مخاطب اور متکلم کی ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل لائیں گے, اور کون سا بدل, بدل الکل, تو پھر اس صورت میں وہ ضمیر کا درجہ اعلی حالانکہ وہ غیر مقصود ہے, اور اس میں ظاہر کا درجہ کم حالانکہ وہ مقصود ہے. بدل کیا ہے, مقصود ہے نا, اور اس میں ظاہر ہے, تو مقصود کا درجہ کم ہوا باوجود اس کے کہ دونوں کا مدلول کیا ہے, ایک مبدل منہ جس پہ دلالت کر رہا ہے, بدل بھی بدل الکل کسے کہتے ہیں کہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہو, تو دونوں کا مدلول ہے ایک, لیکن بدل کا درجہ ادنا ہے حالانکہ وہ مقصود ہے. لیکن باقی بدلوں میں ایسا نہیں ہے, بدل الاشتمال, بدل الغلط اور بدل البعض میں, اگرچہ وہاں پر آپ اس میں ظاہر کو بدل لانا چاہتے ہیں ضمیر سے, تو جس مرضی ضمیر سے بدل لے آئیں, متکلم سے بھی لا سکتے ہیں اس میں ظاہر کو بدل, مخاطب کی ضمیر سے بھی اس میں ظاہر کو لا سکتے ہیں. وجہ یہ کہ وہاں دونوں کا مدلول ہی الگ ہے. بدل البعض میں دیکھو, ما قبل میں مبدل منہ اور بدل الباز دونوں کا مدلول ایک نہیں ہے, وہ مبدل منہ وہ کل پہ دلالت کر رہا ہے اور بدل الباز اس کے جز پہ دلالت کر رہا ہے. اگر ایک مدلول ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ اس سے کم درجے کا ہے, لیکن وہاں تو مدلول ہی الگ الگ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں بخلاف بدل الباز والاشتمال والغلط, بخلا بدل الباز اور بدل الاشتمال اور بدل الغلط کے, فإن المانع فيها مفقود, کیونکہ وہاں یہ مانع مفقود ہے کہ دونوں کا مدلول ایک نہیں. اذ ليس مدلول الثاني فيها مدلول الاول, اس لیے کیونکہ ان کے اندر جو ثانی کا مدلول ہوتا ہے وہ اول کا مدلول نہیں ہوتا, بلکہ دونوں کے مدلول الگ الگ ہوتے ہیں. فيقال, پس یوں کہا جاتا ہے, دیکھیے بھائی پہلی دو مثالیں بدل الباز کی ہیں, اشتاری تو کا, میں نے آپ کو خریدا, یہ کاف ضمیر مبدل منہ ہے, نصف کا, کتنا خریدا, نصف, میں نے آپ کو خریدا, نصف کا یعنی آپ کے نصف کو, تو کاف ضمیر یہ مخاطب کی ہے اور یہ مبدل منہ ہے, اور نصف کا یہ اس سے بدل ہے, یہ اس میں ظاہر ہے بھائی, نصف, نصف کا لفظ کیا ہے, اس میں ظاہر, تو مخاطب کی ضمیر سے اس میں ظاہر بدل آیا, لیکن کون سا بدل ہے, میں نے آپ کا نصف خریدا, مخاطب کل ہے اور نصف کا وہ اس کا کیا ہے, نصف, تو یہ بدل جز ہے, کس کا, مبدل منہ کا, کیا ہے, جز ہے مبدل منہ کا. یہ مثالیں سمجھ لو اچھی طرح بھائی, اشتاری تو کا, یہ کاف مخاطب کی ضمیر, یہ مبدل منہ ہے اور یہ کل ہے, کاف ضمیر سے پورا مخاطب مراد ہوتا ہے, اور نصف کا, مخاطب کا نصف, دیکھو یہ اس کا جز آ گیا اور یہ بدل ہے, اور کس سے بدل ہے, مخاطب کی ضمیر سے اس میں ظاہر, لیکن یہ جائز ہے کیونکہ دونوں کا مدلول الگ ہے, مبدل منہ سے پورا مخاطب مراد اور بدل سے اس کا جز مراد ہے. یا اشتریت نی نصفی, اشتریت تو نے خریدا, نی مجھے, نصفی میرا نصف, تو دیکھو یہ یا ضمیر سے بدل ہے, یا ضمیر یہ مبدل منہ ہے اور نصفی اس سے بدل ہے, اور یا ضمیر پورے متکلم پہ دلالت کرتی ہے, اور نصفی یہ نصف متکلم پہ دلالت کر رہا ہے, اور نصف کیا ہے, اس میں ظاہر, تو یا ضمیر جو متکلم کی ضمیر ہے اس سے نصفی بدل آیا اور یہ بدل الباز ہے اور یہ جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں واشتریتنی نصفی, تو نے خریدا مجھے یعنی میرے نصف کو, واعجبتنی علمک, اعجبتنی, یاد رکھو یہ اگلی دونوں مثالیں بدل الاشتمال کی ہیں, اعجبتنی علمک, اعجبت تو نے تعجب میں ڈالا, نی مجھے, علم کا یعنی تیرے علم نے, اعجبت یہ تا ضمیر فاعل کی جو ہے یہ مبدل منہ ہے, اور علم کا یہ اسے بدل ہے, اور مخاطب کے علم کا اس مخاطب کی ذات سے تعلق ہے, تو یہ کیا ہے, بدل الاشتمال, کیونکہ کسی کی ذات کسی کو تعجب میں نہیں ڈالتی بلکہ اس کی صفات تعجب میں ڈالتی ہیں. وہ اعجب تو کا علمی, یہاں دیکھو اعجب تو کا, میں نے تجھے تعجب میں ڈالا, علمی یعنی میرے علم نے, یہ تا ضمیر جو فاعل کی ہے اس سے علمی بدل ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. وَزَرَبْتُ كَلْ حِمَارَ, میں نے آپ کی پٹائی کی, الحمارہ یعنی گدے کی. یہ دو اگلی دونوں مثالیں جو ہیں بدل الغلط کی ہیں بھائی, کہ ضربتو کا میں نے آپ کی پٹائی کی, الحمارہ یعنی گدے کی, غلطی سے مخاطب کی ضمیر ذکر کر دی, تو کاف ضمیر مبدل منہ اور الحمارہ سے بدل, اور یہ بدل الغلط ہے بھائی. یا اسی طرح ضربتنی, آپ نے میری پٹائی کی, الحمارہ یعنی گدے کی, تو یہاں پر بھی یہ یا ضمیر مبدل منہ ہے اور الحمارہ سے بدل ہے, اور یہ کون سا بدل ہے؟ بدل الغلط ہے بھائی. غلطی سے متکلم نے اپنی ضمیر استعمال کی اور پھر اس کی جگہ الحمار لے آیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو مثالیں ذکر کی آخر میں صاحب جامی نے, اشترائیتو کا نصف کا واشترائیتنی نصفی, توجہ ہے, اشترائیتو کا نصف کا واشترائیتنی نصفی, یاد رکھو یہ دونوں مثالیں بدل البعث کی ہیں, اور یہ دونوں بدل آ رہے ہیں مفعول سے. کس سے؟ مفعول سے. اشترائیتو کا یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ مفعول. اسی سے نصف کا یہ کیا آیا؟ بدل. اسی طرح اشترائیتنی یہ یا ضمیر کیا ہے؟ مفعول. اور نصفی یہ اسی سے بدل ہے. تو یہ مثال ہے کس کی؟ بدل البعض کی. اور کس سے آ رہے ہیں بدل؟ مفعول سے. اگلی دونوں مثالیں یہ بدل الاستعمال کی ہیں. وَأَعْجَبْتَنِي عِلْمُكَ وَأَعْجَبْتُكَ عِلْمِي, یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ بدل الاستعمال کی. اور یاد رکھو یہ دونوں بدل ہیں فاعل سے. اعجبتنی علمو کا, اعجبتا یہ تاز امیر فاعل ہے, اس سے علمو کا بدل. اور وہ اعجبتو کا علمی, اس کے اندر بھی اعجبتو کی تاز امیر فاعل ہے اور علمی اس سے بدل ہے. تو یہ دونوں مثالیں کس کی؟ بدل الاستعمال کی. اور کس سے بدل ہے؟ فاعل سے, دونوں مثالوں میں. اگلی مثالیں دونوں جو ہیں, ضربتو کا الحمارا وضربتنی الحمارا, یہ دونوں مثالیں بدل الغلط کی ہیں بھائی, اور یہ دونوں بدل ہیں مفعول سے. ضربتو کا یہ کاف ضمیر سے بدل ہے الحمار, اور ضربتنی یہ یا ضمیر سے بدل ہے الحمار. تو یہ دونوں مثالیں کس کی؟ بدل الغلط کی. اور یہ کس سے بدل ہیں؟ مفعول سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے بھائی آخر میں وہ دو مثالیں دوبارہ سمجھ لیں. نظرتو الی القمر فلکہ اور رأیتو درجۃ الاسد برجہ, میں نے بتلایا بھائی کہ جدید سائنس بتلاتی ہے کہ چاند جو ہے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے, اور ایک ماہ میں یہ ایک چکر پورا کرتا ہے, اسی لیے ہر روز چاند کی الگ صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے, تو پورے مہینے میں ایک چکر لگاتا ہے. اور زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے, کھلی فضا کے اندر زمین تیر رہی ہے سورج کے گرد, اور پورے ایک سال میں زمین چکر لگاتی ہے سورج کے گرد. اور اس کی وجہ سے چار مختلف موسموں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں, کبھی سردی ہوتی ہے, کبھی گرمی ہوتی ہے, کبھی بہار اور کبھی خزاں. وجہ یہ کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. تو کبھی ایک حصہ زمین کا سورج کے قریب ہوتا ہے, کبھی دوسرا حصہ زمین کا سورج کے قریب ہوتا ہے. تو جو حصہ قریب ہوتا ہے وہاں گرمی ہوتی ہے, جو حصہ ذرا دور ہوتا ہے وہاں سردی ہوتی ہے. تو یہ تو جدید سائنس بتلاتی ہے, اور جبکہ قدیم فلاسفہ یونان ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ جو پورا عالم ہے یہ 13 کروں سے مرکب ہے بھائی. کتنے کرے ہیں؟ 13. میں نے بتایا کرتن یہ گول چیز کو کہتے ہیں, جیسے گیند ہو اس کو بھی کرتن کہتے ہیں, یہ فٹ بال ہے اس کو کرۃ القدم کہتے ہیں عربی زبان میں, کرۃ القدم قدم کی گیند, تو کرتن گیند کو کہتے ہیں. تو یہ پورا عالم وہ کہتے ہیں 13 کروں سے مرکب ہے. پہلا کیا ہے؟ کرۂ ارض, یہ زمین کا کرا ہے. پھر اس کے بعد کرۂ ماء ہے, پانی کا کرا ہے. اس کے بعد کرۂ ہوا ہے, یہ جو ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ کرے کی شکل میں ہے, اس نے پوری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتے تھے اس کرۂ ہوا کے اوپر ایک کرۂ نار ہے, آگ کا گولا ہے جس نے ہر طرف سے زمین کو گھیرا ہوا ہے. اور اس کے اوپر پھر 9 افلاک ہیں. کیا ہیں؟ 9 افلاک ہیں, یعنی یوں کہو آسمان ہیں, 9 آسمان ہیں. تو فلاسفہ یونان جو ہیں وہ 9 آسمانوں کے قائل تھے, جبکہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے کہ آسمان 9 نہیں ہیں بلکہ کتنے ہیں؟ سات ہیں تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نو آسمان ہیں اور وہ نو بھی یہ والے آسمان یہ جو جس میں چاند چکر لگا رہا ہے اس کو وہ آسمان شمار کرتے تھے جس کے اندر اور سیارے جو انہوں نے دیکھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ آسمان شمار کرتے تھے جس کے اندر سورج چکر لگا رہا ہے اس کو بھی وہ آسمان شمار کرتے تھے اور اس کا نام انہوں نے فلک رکھا تھا تو فلک کا کیا معنی آسمان تو لہذا یہ چار کرے ہیں پہلے کرہ ارض کرہ ماء کرہ ہوا اور کرہ نار اور اس کے اوپر نو آسمان ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ فلک قمر ہے اس کے اندر فلک قمر وہ کہتے ہیں یہ فلک قمر جو ہے ایک گول گیند ہے شیشے کی بنی ہوئی بالکل شفاف ہے بھائی اور ٹھوس جسم ہے جیسے سخت چیز ہوتی ہے شیشہ جیسے سخت ہے بھائی تو اس طرح کا ایک گول جسم ہے اور اس نے پوری زمین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اس کورے کے اندر ایک جگہ پر چاند لگا ہوا ہے جیسے کیل دیوار میں لگی ہوتی ہے اس طرح اس شیشے کی گیند پر چاند لگا ہوا ہے اور یہ کورا زمین کے گرد گھوم رہا ہے اسی لیے ہمیں چاند بھی مشرق سے نکلتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو کہتے تھے یہ دراصل چاند نہیں گھوم رہا چاند تو اپنی جگہ پر کورے کے اندر اس فلک کے کورا جو ہے اس فلک کے اندر لگا ہوا ہے اور وہ فلک گھوم رہا ہے بھائی اور پھر اس کے بعد اگلا جو فلک ہے وہ فلک عطارد ہے بھائی یہ سیارہ ہے سورج کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس کا فلک ہے اس کا آسمان ہے وہ بھی شیشے کی طرح شفاف ہے اور وہ آسمان گھوم رہا ہے تو عطارد بھی ہمیں حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد فلک زہرہ ہے زہرہ بھی ایک ستارہ ہے بھائی یہ نظر آتا ہے شام کے وقت اور صبح کے وقت اور خوب چمکدار ستارہ ہے یہ سیارہ ہے کیا ہے سیارہ تو اس کا فلک پھر ہے اس کا آسمان ہے وہ بھی شیشے کی طرح گول ہے اس کے اندر بھی زہرہ لگا ہوا ہے اور وہ گھوم رہا ہے اس کے بعد فلک شمس ہے سورج کا آسمان ہے اس وہ آسمان بھی شیشے کی طرح ہے پورا گول جسم ہے اور اس کے اندر سورج لگا ہوا ہے جیسے دیوار میں کیل لگی ہوتی ہے اور یہ سورج جو ہمیں مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے یہ سورج نہیں حرکت کر رہا یہ وہ سورج کا جو آسمان ہے وہ جو فلک ہے وہ گھوم رہا ہے زمین کے گرد تو اس کی وجہ سے سورج بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے اور پھر اس کے بعد فلک مریخ ہے بھائی کیا ہے فلک مریخ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اردو میں جو رائج ہے وہ ہے مریخ کیا رائج ہے مریخ لیکن یہ درست لفظ نہیں ہے بھائی یہ اصل لفظ مریخ ہے عربی زبان سے ہی آیا ہے اردو کے اندر لیکن اردو میں کیا رائج ہو گیا مریخ کہتے ہیں لیکن اصل یہ عربی کے اعتبار سے یہ لفظ ہے مریخ بھائی تو سورج کے بعد جو ہے مریخ کا آسمان وہ کہتے تھے مریخ لگا ہوا ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے بھائی ستارے کی طرح چمکتا ہوا رات کو نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر فلک مشتری ہے بھائی مشتری کا آسمان ہے پھر اس کے بعد فلک زحل ہے زحل بھی ایک سیارہ ہے اس کا آسمان ہے اور اس کے بعد فلک ثوابت ہے آٹھویں نمبر پر فلک ثوابت ہے یہ جو عام ستارے جو ہمیں رات کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں بھائی شہر کے اندر تو یہ ستارے نظر ہی نہیں آتے کوئی دو چار ہی نظر آتے ہیں کیونکہ نیچے روشنی ہوتی ہے اگر آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں روشنی بالکل نہ ہو آس پاس کہیں دور دور تک روشنی نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آسمان اس قدر ستاروں سے بھرا ہوا ہے کہ اتنا حسین معلوم ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے تو یہ فلک ثوابت ہے ثوابت جمع ہے ثابت کی بھائی کس کی جمع ہے ثابت تو یہ ستارے بھی اپنی جگہ نہیں بدلتے باقی یہ جو سیارے ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں تو ان کی جگہ بدلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے آپ آج دیکھیں گے یہ ایک جگہ ہے دو چار چھ دس دن بعد آپ دیکھیں گے اس نے تھوڑی سی اپنی جگہ بدل لی ہے پھر چند دن بعد دیکھیں اس نے اور جگہ بدل لی باقی ستارے اپنی جگہ ہوں گے لیکن یہ سیارے ان کے اندر جیسے چل رہے ہوں ان کی جگہ آپ کو بدلی ہوئی محسوس ہوگی تو باقی ستارے جو ہیں وہ اپنی جگہ نہیں بدلتے وہ ثوابت کہلاتے ہیں یعنی جو اپنی جگہ پر ثابت ہیں تو ان کا آسمان ہے اس کو فلک ثوابت کہتے ہیں جس کے اندر یہ سارے ستارے لگے ہوئے ہیں یہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے فلاسفہ یونان کی اور پھر اس کے اوپر فلک الافلاک ہے نواں آسمان फलकुल अफलाक है नौवा आसमान, और ये जो दिन और रात होते हैं ये दरअसल फलकुल अफलाक की तेज हरकत है भाई। तो ये सारे, ये कितने आसमान हैं, नौ फलक हैं, नौ आसमान हैं और चार कूरे, यानी यूं कहो पूरी कायनात 13 कूरों से मुरक्कब है, 13 कूरों से मुरक्कब है। बात समझ में आ गई, कौन कौन से हैं? पहला कुराए अर्ज है, फिर कुराए मा है, फिर कुराए हवा है, फिर कुराए नार है, ये चार कुरे हुए, और अगले नौ कुरे जो हैं वो आसमान हैं, यानी फलक कमर है, फलक अतारुद है, फलक जोहरा है, फलक शम्स है, फलक मिर्रीख है, फलक मुश्तरी है, फलक जोहल है, फलक सवाबित है, और फिर फलकुल अफलाक, तमाम फलकों का फलक भाई, यानी सबसे बड़ा फलक भाई वो फलकुल अफलाक नौवां आसमान है। बात समझ में आ गई। तो ये मिसाल देखो, कहते हैं नजर तू इलल कमरी फलकी ही, तो देखो ये कमर का एक फलक है, एक आसमान है और उसमें चांद लगा हुआ है, तो देखो जब हम चांद की तरफ देख रहे हैं तो गोया हम चांद के फलक, चांद के आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये अपने आसमान में लगा हुआ है, पहला आसमान इसी का है। तो नजर तो इलल कमरी, मैंने देखा चांद की तरफ, फलक ही उसके फलक की तरफ भाई, चांद के फलक की तरफ देखा। तो इसके अंदर देखो एक है कमर, एक है फलक कमर, तो कमर क्या है, फलक कमर का एक जुज है, वो फलक घूमता है तो चांद भी घूमता है, तो अल कमर ये मुबदल मिनहु है, और फलक ही अई फलक इल कमर ये क्या है, बदल, और मुबदल मिनहु यानी कमर जुज है फलक कमर का। इस पर फिर इश्काल होता है कि भाई चांद तो फलक का जुज नहीं है, बल्कि चांद तो उसके अंदर गाढ़ा हुआ है, जैसे कील दीवार के अंदर गाड़ी जाती है, तो कील दीवार में गाड़ने से कोई दीवार का जुज नहीं बन गई, कील जब आपने दीवार में लगा दी, अब हम ये नहीं कह सकते ये दीवार है, इशारा किसकी तरफ करें, कील की तरफ, और क्या कहें, ये दीवार है, नहीं भाई, कील बेशक दीवार में आपने गाड़ दी, लेकिन कील अलग चीज है, दीवार मिट्टी और गारे और पत्थरों की बनी हुई अलग चीज है भाई। तो चांद का फलक में गाड़े हुए होने से यह लाजिम नहीं आता कि चांद उसका जुज बन गया, तो यह मिसाल सही नहीं। कमर को फलक कमर का जुज करार देना और यह कहना कि यह मिसाल किसकी है, कि मुबदल मिनहू जुज है बदल का, यह दुरुस्त नहीं। साहिब जामी फरमाते हैं कि भाई यह तो एतराज मिसाल पे हुआ, किस पे हुआ, मिसाल पे एतराज है, इससे कोई हर्ज नहीं, और भी मिसाल जिक्र की जा सकती है। चुनाचे फिर साहिबे जामी ने दूसरी मिसाल जिक्र की, रअयतु दरजतल असदी बुरजहू, रअयतु दरजतल असदी बुरजहू, मैंने दर्जे असद को देखा, यानी असद के बुर्ज को, मैंने दर्जे असद को देखा यानी उसके बुर्ज को देखा भाई, उसके बुर्ज को देखा। मैंने बताया कि यह जमीन जो है सूरज के गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द घूम रही है, तो साल के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें आसमान के मुख्तलिफ हिस्से नजर आते हैं। जैसे मैंने मिसाल से वजाहत की भाई कि आप कमरे के दरमियान में एक मेज रखें, यूं समझो ये सूरज है, क्या है, सूरज है, या इस पर एक गेंद रख लें, वो गेंद सूरज है भाई, और फिर आप मेज से कुछ फासले पर खड़े हों गेंद लेकर, और ये इस गेंद पर आप एक कैमरा लगा दें जो दरवाजे की तरफ हो, आप मेज और दरवाजे के बीच में खड़े हो जाएं मेज से कुछ फासले पर, और गेंद पर एक कैमरा लगाएं जिसका रुख किसकी तरफ है, दरवाजे की तरफ है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करें, आपने इस मेज के गिर चक्कर लगाना है पूरा बराबर फासला रखते हुए, तो आप पूरे कमरे के अंदर घूम जाएंगे, और जूं जूं आप घूम रहे हैं तो आपके हाथ में जो गेंद है और जिस पर कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के अंदर दीवारें बदलती जा रही हैं, आप जब दाईं जानिब आए तो उस कैमरे में दाईं जानिब की दीवारें आ रही हैं, आप जब सामने वाली जानिब आए तो इसमें सामने वाली दीवारें नजर आ रही हैं, आप जब बाईं जानिब आए तो इस कैमरे में अब बाईं जानिब वाली दीवारें नजर आएंगी, और आप जब दरवाजे के सामने आएंगे तो इस कैमरे में दरवाजा नजर आएगा भाई, तवज्जो है। तो इसी तरह जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है फजा में, और घूमते हुए हमें साल के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान के मुख्तलिफ हिस्से नजर आते हैं, जैसे हमें कमरे की दीवारों के मुख्तलिफ हिस्से नजर आ रहे थे कैमरे में भाई। तो تو ان چیزوں کا مشاہدہ فلاسفہ یونان بھی کرتے تھے. تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے, وہ کہتے تھے یہ آسمان گھوم رہا ہے. فلک ثوابت کیا ہے؟ وہ گھوم رہا ہے اور اس کی وجہ سے ستارے ہمیں سال میں بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ میں نے مثال سے وضاحت کی تھی. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں اور گاڑی آگے کو چل رہی ہے, اگر آپ شیشے سے دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے چیزیں پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہیں. یہ چیزیں نہیں پیچھے کی طرف دوڑ رہی بلکہ آپ آگے کی طرف حرکت کر رہے ہیں. تو اسی طرح زمین حرکت کر رہی ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ آسمان کے ستارے کیا ہیں, پیچھے کی جانب حرکت کر رہے ہیں. تو اس طرح پورے سال کے اندر مختلف حصے آسمان کے نظر آتے تھے, مختلف ستارے نظر آتے تھے. تو اس کو انہوں نے 360 درجوں میں تقسیم کیا. ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 360 درجے ہوتے ہیں. اور اس کی وضاحت میں نے ایک مثال سے کی. مثلا دیکھو درجہ کسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے یوں کریں, ایک لاٹھی زمین پر رکھیں اور اس لاٹھی کی بلکہ لاٹھی کے برابر زمین پر ایک لکیر کھینچ دیں اور اس کے اوپر اس لاٹھی کو رکھ دیں, اس لکیر کے اوپر, بالکل لکیر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کے اوپر لاٹھی پڑی ہو, اور اب لاٹھی کے ایک سرے پر نشان لگا دیں زمین پر. اب آپ دوسری جانب سے لاٹھی کے کنارے کو اوپر اٹھائیں, ایک سرا جہاں آپ نے نشان لگایا ہے وہ زمین پر ہی رہنا چاہیے, اسے آپ نے نہیں ہلانا. توجہ ہے؟ اب آپ اس لاٹھی کو آہستہ آہستہ دوسرے کنارے سے اوپر اٹھائیں, ایک کنارہ وہیں لگا ہوا ہے زمین پر اور دوسرا کنارہ آپ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے لاٹھی کے اندر اور وہ جو زمین پر آپ نے لکیر کھینچی ہے ان کے درمیان آپ کی جانب فاصلہ بڑھ رہا ہے. ایک جانب تو دونوں ملے ہوئے ہیں, لکیر کے ساتھ لاٹھی ملی ہوئی ہے, دوسری جانب آپ جون جون لاٹھی کا سرا اوپر کر رہے ہیں تو اس لکیر میں اور لاٹھی میں فاصلہ آ رہا ہے. یاد رکھو یہ جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح فاصلہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک کونا ملا ہوا ہو اور باقی دونوں کونے ایک دوسرے سے دور ہوں, اس کو زاویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زاویہ. تو آپ جون جون لاٹھی اوپر کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے زاویے کی مقدار بڑھ رہی ہے, زاویے کی مقدار بڑھ رہی ہے. اور اس میں انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں درجے کے اعتبار سے. تو یوں سمجھو جون جون لاٹھی کا ایک سرا اوپر اٹھ رہا ہے, زاویے کے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جب آپ لاٹھی کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیں گے اسی نقطے پر, تو ایک نقطہ لکیر کا اور لاٹھی کا سرا دونوں ملے ہوئے ہیں ایک نقطے پر. تو اس نقطے پر لاٹھی سیدھی کھڑی کر دی تو اب یہ جو لکیر ہے اور یہ لاٹھی ہے ان کے درمیان 90 درجے کا زاویہ ہے. جیسے کمرے کے کونے میں دو دیواریں آ کر ملتی ہیں تو ان دیواروں میں جو زاویہ ہوتا ہے وہ بھی یہی 90 درجے کا عموماً زاویہ ہوتا ہے, الا یہ کہ وہ دیواریں ہی ٹیڑی ہوں وہ الگ بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کمرے کے کونے میں 90 درجے کا زاویہ ہوتا ہے. تو اس لاٹھی کا بھی اب اس لکیر سے کتنے درجے کا ہے زاویہ؟ 90. اسی لاٹھی کو اس نقطے پر اسی طرح رکھنا ہے اور اس کو اب دوسری طرف جھکاتے چلے جائیں, آپ دیکھو وہ زاویہ 90 سے بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ لاٹھی کو لکیر سے دوسری جانب کو آہستہ آہستہ جھکاتے جا رہے ہیں اسی نقطے پر رکھے ہوئے, تو وہ زاویے کی مقدار 90 سے بھی بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ جب آپ لاٹھی کو مخالف سمت میں بالکل زمین پر لٹا دیں گے تو لکیر ایک جانب ہے اور لاٹھی دوسری جانب ہے, البتہ دونوں کا ایک سرا ملا ہوا ہے. جب لاٹھی سیدھی کھڑی تھی تو ایک طرف بھی 90 درجے کا زاویہ بن رہا تھا, دوسری طرف بھی 90 درجے کا. تو یہ 90 اور 90 یہ اب گویا 180 درجے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 180. اور اسی طرح لاٹھی کو دوسری طرف سے, اگر نیچے تو زمین ہے, اگر کھلی فضا ہوتی لاٹھی گھومتی ہوئی پھر اسی لکیر پر آ جاتی تو 180 زاویے نیچے کی جانب ہو جاتے. تو 180 اور 180 کتنے ہو گئے؟ 360. تو دائرے میں کل کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 360 درجے ہوتے ہیں. تو زمین بھی جب سال کے اندر گھومتی ہے تو یہ 360 درجے طے کر لیتی ہے. کتنے درجے؟ اور چنانچہ اس میں آسمان کے مختلف حصے سال بھر میں نظر آتے ہیں. تو ان حصوں کو بھی انہوں نے درجوں میں تقسیم کیا اور اس کے بھی انہوں نے فلاسفہ یونان نے 360 درجے بنائے. یعنی تقریباً ہر روز ایک درجہ زمین طے کرتی ہے تقریباً. अगर साल 360 दिन का हो फिर तो हर रोज एक दर्जा तय करेगी, लेकिन साल तो 360 दिनों का नहीं होता। कुछ इस्लामी साल है तो वो थोड़ा सा कम है और अंग्रेजी साल है तो वो थोड़ा सा 4-5 दिन ज्यादा है। तो हर रोज तकरीबन एक दर्जा जमीन तय करती है। तो साल के 12 महीने हैं, तो 12 से इस 360 को तकसीम करें तो ये हर महीने में 30 दर्जे बन जाते हैं। हर महीने में गोया जमीन हर महीने में 30 दर्जे तय कर लेती है, और ये जो 30 दर्जे हैं इसका नाम उन्होंने बुर्ज रखा। क्या नाम रखा? बुर्ज रखा। तो ये देखो घूम जमीन रही है लेकिन लगता यूं है आसमान घूम रहा है। तो ये जो 30 दर्जे बनाए उन्होंने किस पर बनाए? आसमान पर बनाए, जमीन पर नहीं, क्योंकि जमीन तो उनके ख्याल में साकिन थी, मरकज है, आसमान घूम रहा है। तो 360 दर्जों में पूरा आसमान घूम जाता है। तो महीने में कितने दर्जे तय करेगा आसमान? 30 दर्जे। तो ये जो 30 दर्जे होते थे हर महीने में, इसका नाम उन्होंने बुर्ज रखा। एक का नाम मसलन बुर्ज असद है, एक का नाम बुर्ज सौर है, सावरा, सौर का माना बैल, बैल, असद का माना क्या था? शेर। तो एक बुर्ज असद है, एक बुर्ज सौर है, वे वैसे ही नाम रखे हुए हैं भाई, और एक बुर्ज हूत है, हा व और लंबी ता दो नुक्तों वाली, हूत का माना मछली। इसी तरह बुर्ज सुंबुला है, इसी तरह बुर्ज जौजा है। तो इस तरह 12 बुर्ज उन्होंने मुकर्रर किए भाई। तो मालूम हुआ बुर्ज असद उसमें कितने दर्जे हैं? 30 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 30 दर्जे। तो ये आसमान उनको घूमता हुआ नजर आता, तो हर रोज गोया आसमान एक दर्जा तय कर रहा है। तो 30 दर्जे जब पूरे हो जाएंगे तो अगला बुर्ज शुरू हो जाएगा। मसलन बुर्ज असद शुरू हो गया, बुर्ज असद। अब ये 30 दिन तक आसमान घूमता रहेगा, हर रोज एक एक दर्जा तय हो रहा है। तो 30 दिन के अंदर बुर्ज असद के 30 दर्जे पूरे हो गए और अगला बुर्ज शुरू हो जाएगा। तो 30 दिन बुर्ज असद में रही जमीन, फिर अगला बुर्ज शुरू हो जाएगा। मसलन अगला बुर्ज सुंबुला है, तो अगले 30 दिन आसमान का बुर्ज सुंबुला हमें नजर आएगा, और 30 दिन के बाद फिर आसमान का बुर्ज बदल जाएगा। अब हमें कौन सा बुर्ज नजर आएगा? अगला मसलन कोई भी बुर्ज सौर है, उनके तरतीब थी भाई, तरतीब से 12 थे, एक बुर्ज 30 दिन रहा, फिर बदल गया दूसरा बुर्ज, तीसरा बुर्ज। तो वो इस तरह बताते थे कि आजकल कौन सा जमाना है? बुर्ज असद का जमाना है। अब कौन सा जमाना है? बुर्ज सुंबुला का जमाना है। अब बुर्ज सौर का जमाना है। अब बुर्ज हूत का जमाना है। तो इस तरह उन्होंने नाम रखे हुए थे। तो मालूम हुआ बुर्ज असद में भी कितने दर्जे? 30 दर्जे। तो यहां क्या आया? रअयतु दर्जतल असदी, मैंने बुर्ज असद का दर्जा देखा, एक दर्जा देखा बुर्ज असद का। और कुल कितने हैं बुर्ज असद में? 30। तो ये एक दर्जा 30 का क्या हुआ? जुज हो गया। क्या हो गया? तो दर्जतल असद ये है जुज, और बुर्जहू बुर्ज असद क्या है? कुल है। क्या है? कुल। तो ये मिसाल किसकी हुई? रअयतु दर्जतल असदी, मैंने बुर्ज असद का दर्जा देखा, बुर्जहू यानी उसका बुर्ज देखा। जब बुर्ज असद का दर्जा देखा है तो बुर्ज ही देखा है, क्योंकि ये उसी का जुज है भाई। तवज्जो है। तो दर्जतुल असद क्या है? जुज। और बुर्जुल असद क्या है? कुल। तो ये जो मुबदल मिनहु है ये जुज हुआ बदल का। तो ये बदलुल कुल अनिल बास की मिसाल हुई भाई। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।